ಮಾರ್ತನ ಪರೋ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಾಂಬೋ ನಿಧಿ ಧೀರ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಕರೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಭೋಜಿತ ಚೈತನ್ಯ ಕೃಪಾ ಬರ ಭುವಿ ಭುವ ಭಾರವಹಂತಾರಕ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀದೇವ ಗೋಪಾಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಣೈ ಕನಿಪುಣ ಸಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲೋಕನಾಮಿತಕಾರಿಣ ತ್ರಿಭುವನೆ ಮಾನ್ಯ ಶರಣ್ಯಾಕರೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದ ಭಜನ ನಂದೇನ ಮಾತಾಲಿಕ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀದೇವ ಗೋಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ ಗುಣಾನುವರ್ಣನ ವಿದ ಶ್ರಮಿತ ತಾಪನಿ ಕೇತನು ತನು ವೃತ ಗೋವಿಂದ ಗಾನಾಮೃತ ಆನಂದಾಂಬು ದಿವಾರ್ಧನೈಕ ನಿಪುಣ ಕೈವಲ್ಯ ನಿಷ್ಕಾರಕ ಮಂದೇ రూప సనాతన రఘుయుగ శ్రీ దేవ గోపాల తోరణం శేషమండలపతి శ్రేణి సదా తోచవ భూత్వాదేన గణేశ కరుణయా కోపేన కంతాసితో గోపీ భావ రసామృత దిల హరీ కల్లోల మగ్నోమో సనాతన రఘుయుగ శ్రీ దేవ గోపాల కోకిల హంస సారస గణా కీర్ణే మయూరాకులే నిబాదమూల విటక శ్రీయుక్త వృందావనే కృష్ణ అహర్నిశం ప్రభజత జీవార్థదయో ముదా వందే రూప సనాతన రఘుయుగ శ్రీ దేవ గోపాల పూర్వక నామ గానన తిభే కాలవసాని కృతో నిద్రాహార విహార కాది విజిత సాత్యంత దీనో జయ కృష్ణ గుణేశ మధురిమా నందేన సమోహితో ಸನಾತನ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲ ಕುಂಡ ತಟೇ ಕಾಲೇಂದ ತನಯ ತೀರೆ ಚವಂಸಿ ಬಟೆ ಮಾಧವ ಸಾಧ ಶೇಷ ದಶಯ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಮತ ಸದಾ ಚಕದಾರೇರ್ಗುಣವರಂ ಆವಾವಿಭೂತ ಮುದ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀ ದೇವ ಗೋಪಾಲ ರಾಧೆ ಪ್ರಜ ದೇವಿ ಕೇ ಚಲಲಿತೆ ಹೇ ನಂದ ಸುನೋ ಕುತ ಗೋವರ್ಧನ ಕಲ್ಪ ಪಾದ ಪತಲೆ ಕಾಲಿಂದೇವನೆ ಕುತ ಸಂತಾವಿತಿ ಸರ್ವತೋ ಬ್ರಜಪುರೆ ಹೇ ದೇಲ್ ಮಹಾವಿವಲೋ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀ ದೇವ ಗೋಪಾಲ
ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟಕಂ ಕೀ ಜಯ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತೋ ಆಪ್ ಸಬ್ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಇಸ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಔರ್ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ದಾವ್ ಜಿ ಕೆ ಪ್ರಭು ಕಾ ಸಬ್ ಭಕ್ತ ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ ಕೆ क्योंकि ताऊ जी कृपा प्रभु आज कृपा करने के लिए आए किसके ऊपर, नित्यानंद के ऊपर, नित्यानंद काउंसलिंग ग्रुप के ऊपर है ना। ताऊ जी, ताऊ जी भी किसका नाम है, नित्यानंद के ऊपर है ना। तो उनका हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करें।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण, कृपया सब लोग मोबाइल को बंद करेगा है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और वो दरवाजा को लगा दीजिए। और मैं जो आज विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो कृपया मेरा निवेदन है सब भक्तों से कि इसको बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें है ना। तो आज हो गया, तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो कृपया ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें और साथ साथ में इन जो चीजों का आज चर्चा होगा उसको आप लोग हमेशा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम सभी मिलके उसको उतारने का प्रयास करेंगे अपने जीवन में। और ये जो आज का प्रवचन है यही हमारा होमवर्क नेक्स्ट बार के लिए रहेगा, वो भी मैं पहले से बता दे रहा हूँ है ना, ताकि आप लोग ध्यान से सुने है ना। होमवर्क यही रहेगा जो आज का क्लास है, नेक्स्ट बार का होमवर्क है और मैं उसको पूछूंगा ठीक है। तो हमने जो विषय आज चर्चा करने का जो सोचा है वह है भक्त समुदाय के छह सिद्धांत के विषय में, हाँ, सिक्स प्रिंसिपल ऑफ डिवोटी कम्युनिटी। किसके विषय में, भक्त समुदाय के छह सिद्धांत के विषय में आप हम आज चर्चा करेंगे, जो कि बहुत हमारे जीवन में, हम भक्त बने हुए हैं, हम भक्ति मार्ग को स्वीकार किए हुए हैं, इस मोमेंट में कृष्ण भावनामृत में संघ में जुड़े हुए हैं, तो हमको विशेष करके इन छह सिद्धांतों का बहुत सिद्धांतों को जानना चाहिए और साथ साथ में इन सिद्धांतों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। विशेष करके जब समुदाय की बात आती है ना, कम्युनिटी की बात आती है जब ना, तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी समाज किसी न किसी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। आप कृष्ण भावनामृत में आने से पहले भी ये देखेंगे कि आप लोग किसी न किसी कम्युनिटी किसी न किसी समाज से हर एक लोग जुड़े रहते हैं ना, किसी क्लब को ज्वाइन किए रहते हैं, किसी और कम्युनिटी के या सोसाइटी में जुड़े रहते हैं है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्कीम्स भी होते हैं है ना। आप इस हमारे इस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, आपको ये ट्रेवलिंग में जाने के बाद या ये टिकट फ्री मिलेगा, ये मिलेगा, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे ऑफर्स भी रहते हैं ना। तो हर व्यक्ति किसी न किसी सोसाइटी, ये वाला पंखा बंद कर दो, काम करो नहीं, ये वाला एक चालू रखने दो। तो हम किसी न किसी समुदाय किसी न किसी सोसाइटी से हम जुड़े ही रहते हैं है ना। ये पहले से हर एक व्यक्ति का ये स्वभाव है कि वो किसी न किसी समुदाय किसी न किसी सोसाइटी, नहीं तो ये जो पॉलिटिक्स और कुछ न कुछ में तो जुड़ा रहता है हर एक व्यक्ति। तो ये जो समुदाय है वहां पे जो बाहर के जो कम्युनिटी बाहर के जो समुदाय है वो लोग का जो आपस में चर्चा होता है, उस चर्चा के पीछे जो उद्देश्य होता है उनका खुद का स्वार्थ होता है, खुद की इच्छाएं होती हैं है ना। किसी भी समुदाय जो बाहर के जो भी समुदाय चल रही है उसके पीछे हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी इच्छाएं होती है। इसलिए देखेंगे कि ऐसे कम्युनिटी ऐसे समुदाय में हमेशा क्लेश झगड़ा हमेशा होता ही रहता है ना, आपस में एक दूसरे का मीटिंग, सोसाइटी मीटिंग बैठेगा। मैं कभी कोई लेट आता हूँ मंदिर से, 11:30-12 बजता होता है, मीटिंग बैठा रहता है सोसाइटी में, है इतना छोटा सा सोसाइटी लेकिन उसमें मीटिंग, तो बहुत 12 बजे रात को कुछ ना कुछ आपस में झमेला चलता रहता है, इतना जोर जोर से चिल्लाना चीखना रहता है उन लोग का। तो मैं वही सोचता हूँ कि सब लोग बैठक करते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं बैठते हैं, किसी न किसी समुदाय, किसी न किसी सोसाइटी से सब लोग जुड़े हुए, लेकिन वहां पे केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण न होने के कारण, सही व्यक्ति केंद्र बिंदु न होने के कारण वहां पे क्लेश और झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति का स्वार्थ, व्यक्ति की इच्छा, और जब व्यक्ति का इच्छा जब पूरा नहीं होता है ना, तो फिर झगड़ा होता है ना। वो मान लीजिए कुछ प्रस्ताव को रखा, अपनी इच्छा को व्यक्त किया, कुछ प्रस्ताव को रखा, तो फिर सामने वाले चार लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, फिर उसको तकलीफ होगा, फिर वो चिल्लाएगा, फिर वो भड़केंगे, फिर ये भड़केंगे, इस प्रकार से ये जो बाहर के समुदाय, जो कम्युनिटी है, इस प्रकार से होता है उन लोगों में। लेकिन हमारा जो समुदाय है, ये जो भक्त का समुदाय है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम जो है केंद्र बिंदु जो है वो कृष्ण को मनाते हैं। केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण को जब बनाते हैं ना, तो क्या है, वहां पे हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, है ना, एक दूसरे भक्त के इच्छाओं को पूरित करने में लगते, मतलब दूसरे एक हर भक्त दूसरे भक्त को सपोर्ट करता है ना, उसके जो उसकी जो इच्छा है उसको सपोर्ट करता है, उसके बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डिस्कशन है हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, कृष्ण के लिए हो रहा है, क्योंकि केंद्र बिंदु जो है वो कृष्ण है। तो आज के 6 सिद्धांतों में से जो पहला सिद्धांत है वह है केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण, है ना। हमारे जो कम्युनिटी, हमारे जो इस सत्संग का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, कृष्ण है, है ना। और यहाँ पे जो भी ये जो सत्संग है, यहाँ पे जो भी कार्य होता है वो निस्वार्थ भाव से होता है। बाहर का जो कम्युनिटी है उसमें स्वार्थ रहता है, लेकिन हम भक्तों का जो समुदाय है यहाँ पे निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं, है ना। हम इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हैं, भक्त समुदाय में आए हुए हैं, तो इसलिए आज का जो 6 सिद्धांतों में से जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वह क्या है, केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण है। तो इस ये जो वैष्णव समुदाय है, एक्चुअली में बड़े से बड़े महात्मा भी इस प्रकार के जो बैठक है ना, इसमें वो आना चाहते हैं, भक्तों के संगत में। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी, आप लोग को मालूम है कि ब्रह्म विमोहन लीला है ना, इससे परिचित होंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण को देखा कि वो ग्वाल बालो मित्रों के साथ कैसा उनका जूठा खा रहे हैं, उनके प्लेट में खा रहे हैं, इस प्रकार का सीन देखकर ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, है ना। और उसके बाद आप लोग जानते हैं किस प्रकार से फिर उन्होंने अपराध किया, फिर किस प्रकार से बाद में फिर उनको ये अनुभूति हुआ, फिर वो भगवान के शरण में जाके ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार की बहुत स्तुतियां की भगवान को, और वो स्तुतियां करते हुए कहते हैं कि तदस्तु मे नाथ, हे प्रभु, मैंने आपके चरण कमलों बहुत बड़ा अपराध किया हूं, आपके चरण कमलों कृपया हमारे ऊपर कृपा करके हमको भक्तों की संगत में शरण दीजिए, ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, डायरेक्ट ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि आप हमको भक्तों की संगत प्रदान करें, हमको कृपा करें। क्यों? क्योंकि भक्तों की जहां पे संगति होते हैं ना, वहां पे भगवान कृष्ण उपस्थित रहते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे कि हमें जो वैष्णव समुदाय बैठे हैं यहाँ पे कृष्ण कैसे उपस्थित हैं, इस चीज की भी हम चर्चा करेंगे, इसका अनुभूति हम करेंगे कि कृष्ण यहाँ पे उपस्थित है। मैं इस बात को आगे बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे कृष्ण उपस्थित है। तो ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे भगवान को कि हमको भगवान की भक्तों की संगति का शरण दीजिए, हमको संगति चाहिए। और क्यों? क्योंकि इस प्रकार से ब्रह्मा जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे सत्संग जहां पे होता है, जहां पे वैष्णव लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे कृष्ण जरूर रहते हैं, तो निश्चित रूप से कृष्ण का निरंतर संगति प्राप्त होगा वहां पे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से हमको इस वैष्णव, हमारा जो समुदाय है, हमको इसमें कृष्ण को केंद्र बिंदु रखना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कृष्ण को केंद्र बिंदु रखना। हम जब तक कृष्ण को केंद्र बिंदु नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर क्लेह और अहंकार ये सारे चीजें हमारे अंदर विकसित होगा। जब कृष्ण को केंद्र बिंदु रखेंगे तो हम क्या करेंगे वहां पे, सब लोग मिलके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सोचेंगे। हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? केंद्र बिंदु कृष्ण है तो उनको प्रसन्न करने के लिए। ऐसे ही एक भक्त को अपने जीवन का जो केंद्र बिंदु है कृष्ण को ही बनाना चाहिए। अपने घर के अंदर भी केंद्र बिंदु कृष्ण को बनाना चाहिए। आप कंपनी में भले से कार्य कर रहे हैं लेकिन यह भावना रहना चाहिए कि मैं भले से 8 घंटा कंपनी में जाके काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, लेकिन वह नौकरी भी भगवान कृष्ण के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो केंद्र बिंदु कृष्ण उनके लिए करता हूँ। तो क्या उनके लिए करता हूँ तो हमको क्या करना है? क्या उनके लिए करता हूँ तो जो भी हमको सैलरी मिला सब उनको दे दिया जाए? ऐसा नहीं। हमको अपने पालन पोषण के लिए जो भी चीजें कर रहे हैं वो सब कुछ उनको अर्पण करना है। अर्पण करते हुए ग्रहण करना है। चाहे कोई भी आपने नया कपड़ा खरीद के लाया तो अर्पण करिए वहां पे कि प्रभु आज मैंने कपड़ा खरीद के लाया। कोई भी चीज हो। एक चीज स्मरण आ गया, एक्चुअली एक उदाहरण। एक प्रभु बता रहे थे, चौपाटी मंदिर की घटना है कि एक कोई तो भक्त आया, कुछ भगवान को चढ़ावा लेके आया था। अब उसने बहुत सारा प्रोग्राम इस्कॉन का अटेंड किया था, इधर उधर से जो भी, तो सुना था कि जो भी सब कुछ अर्पण करना चाहिए भगवान को। कौन सा गीता का श्लोक है जहाँ पे भगवान बता कि सब कुछ अर्पण करना चाहिए? मुझे यत करोसी यदत्नादि यज्ञ होसी ददाति यस। जो भी कुछ करो, कोई भी कार्य करो, खाओ पियो कुछ भी करो, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हुए करो, भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो व्यक्ति भी कुछ लेके आया भगवान को अर्पण करने के लिए, तो पैकेट लेके आया और पुजारी को दिया कि आप अर्पण करिए। तो पुजारी ने पैकेट खोला तो उसमें क्या था पता है? बॉक्सिंग बॉल था। ये हाथ में पहन के बॉक्सिंग करते ना। तो कुछ वो प्रभु जी बोले कि अरे ये क्या लेके आए यार, ये भी कोई भोग लगाने वाली चीज है क्या? तो बोला कि देखिए मैंने प्रवचन सुना हूं आप लोग का, है ना, सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, तो क्यों ये क्यों नहीं अर्पण होगा? मैंने कुछ लिया तो भगवान को अर्पण करूंगा और उसके बाद फिर मैं यूज करूंगा ना उसको। तो पुजारी ने सोचा कि अरे उसका स्टेटमेंट तो तगड़ा था, है ना, सही बात है। तो फिर वो भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लगा देते। खोला और पैकेट भोग लगा दिया, चरण में रख के भगवान के चरण में रख के वो दे दिए। लेकिन उनके मन के अंदर एक प्रश्न था कि तुमने चढ़ाया अभी इसका करेगा क्या? तो बोला कि अभी मैं इसको पहनूंगा, अभी बॉक्सिंग करूंगा ना, तो अभी सबको महाप्रसाद मिलेगा। तो इस प्रकार के तो उसकी इतना तो उसको समझ में आ गया, इतना तो उसको समझ में आया कि जो भी कुछ करना है कृष्ण को अर्पण करके फिर यूज करना है। तो इस प्रकार से हमको केंद्र बिंदु जो है ना कृष्ण को बनाना है, ताकि हम उनको केंद्र में रख के उनको जब चलेंगे ना तो हमारी प्रगति ना बहुत तेज होगी। जैसे कि श्री प्रभुपाद जी पूरे विश्व में मंदिर की स्थापना किया प्रभुपाद जी ने, है ना। आपने देखा होगा कि प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए तो विग्रहों की स्थापना किया वहां पे उन्होंने जाके, है ना। कोई हालांकि वहीं पे कोई ब्राह्मण नहीं थे, सब लोग गलत कार्यों में लगे हुए थे, है ना, एकदम गलत कार्यों में लिप्त थे सब लोग, कोई ब्राह्मण नहीं था, फिर भी वहां पे जाके प्रभुपाद जी ने विग्रहों की स्थापना की। जब विग्रहों की स्थापना होता है तो हम जानते हैं कि कितने नियम और रूल्स रेगुलेशन है विग्रहों की सेवा पूजा के लिए। भक्ति रसामृत सिंधु में इस सारी चीजों को बताया गया। रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि किस प्रकार से विग्रहों की सेवा पूजा होता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इन चीजों का विचार नहीं किया। प्रभुपाद जी ने एक स्टेप आगे कदम रखा। सोचिए विग्रहों की स्थापना करना, वो भी ऐसे जगह पे स्थापना करना जहां पे प्रभुपाद जी को ये विश्वास नहीं था कि वो लोग सेवा पूजा करेंगे ढंग से, उन जगहों पे भी भगवान कृष्ण को उन्होंने रखा प्रभुपाद जी ने, है ना, वहां विग्रहों की स्थापना किया। इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम था कि जिस विग्रहों की जब स्थापना कर दूंगा तो निश्चित रूप से एन तेन प्रकार इनकी चित्त में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि उनको कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने विग्रहों की स्थापना किया और कोई ब्राह्मण नहीं थे, यहाँ तक कि ऐसे भी वर्णन है कई मंदिरों का कि वहां पे सीनियर भक्त मतलब 6 महीना पुराना है, 6-6 महीने पुराने जुड़े हुए। सोच सकते हैं 6 महीने में व्यक्ति क्या सीखेगा, लेकिन ऐसे 6 महीने वाले भक्त को भी प्रभुपाद जी ने हेड पुजारी बनाया। तुम हेड पुजारी हो, सेवा करो, हेड पुजारी बनाया प्रभुपाद जी ने। तो इस प्रकार से अब कई कई तो ऐसे भी मंदिर थे जहां पे प्रेसिडेंस और रेसिडेंस एक ही जगह था। तो ऐसे ऐसे जगह पे प्रभुपाद जी ने विग्रहों की स्थापना किया। है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम था कि केंद्र बिंदु अगर कृष्ण को बना देते हैं इन लोग का, अगर वो विग्रहों की पूजा करेंगे तो एक न एक दिन निश्चित रूप से इनके हृदय का परिवर्तन होगा, इनकी प्रगति होगा, तेजी से प्रगति होगा। ऑस्ट्रेलिया में जब प्रभुपाद जी विग्रहों की स्थापना किया तो प्रभुपाद जी वहां पे स्थापना करने के बाद भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते हुए प्रभुपाद जी बहुत हृदय से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैंने आपकी स्थापना तो यहाँ पे तो कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि ये लोग किस प्रकार का आपका ख्याल रखेंगे, इसलिए कृपया आप अपना स्वयं ख्याल रख लेना। प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हुए विग्रहों के पास कि आप स्वयं अपना ख्याल रखने लगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि ये लोग कितना आपका ख्याल रखेंगे। तो एक जो शुद्ध को वैष्णव होता है ना, वो विग्रहों के साथ बातचीत करता है, उसका आदान प्रदान होता है। जैसे कि मैंने अभी दो दिन पहले बंसीदास बाबाजी महाराज का तिरुभाव तिथि था, तो उस दिन मैंने इस बात को बोल रहा था कि बंसीदास बाबाजी महाराज जो कि विग्रहों के साथ बातचीत करते थे, है ना, उनका कितना प्रेम था विग्रहों के साथ। जो एक सिद्ध महात्मा होते, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना, वो हमेशा विग्रहों के साथ बातचीत करते हैं और विग्रहों के साथ उनका आदान प्रदान होता है। तो बंसीदास बाबाजी महाराज के पास गौर निताई था, वो उनसे बातचीत करते थे। तो वो बातचीत करते करते और किस प्रकार का रखते थे विग्रहों को, कि एक बार मैंने उस दिन बताया है इस बात को, लेकिन आप लोग नहीं थे इसलिए मैं थोड़ा फिर से बताता हूँ कि वंशीदास बाबाजी महाराज उन विग्रहों को जो भी भिक्षा मिलता था लाके भोग लगाते थे, और नहीं मिलता था तो नहीं भोग लगाते थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर मैं तो भिखारी हूँ, जो मिला भोग लगाऊंगा, नहीं मिला तो नहीं लगाऊंगा, आपको रहना तो रहिए नहीं तो जाइए इधर से। इस प्रकार का आदान प्रदान विग्रहों के होता। एक बार की घटना है कि वो भोग लगाने के लिए सारा तैयारियां करके भिक्षाटन करके आए, नित्यानंद त्रयोदशी का चैतन्य महाप्रभु का आभार गौर पूर्णिमा का दिन था, और उस दिन उन्होंने बहुत मेहनत करके भिक्षाटन करके आए, और आए तो देखे कि जिस पात्र में भोग बनाना है वो पात्र गायब है, और जब पात्र गायब है तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, मैंने अभी इतने दिन से भिक्षाटन किया नहीं, आज गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है तो आज के दिन मैं भिक्षाटन करके जब कुछ बना के उनको अर्पण करने का सोचा तो पात्र ही गायब है। तुरंत डंडा उठा लिया और डंडा उठा के विग्रहों को बोला कि क्या कर क्या रहे थे तुम लोग, बर्तन चोरी हो गया, और इस प्रकार से मारने के लिए दौड़े और विग्रह वहां से उठ के भागे। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक शुद्ध कोटि का वैष्णव होता है, भगवान के साथ विग्रहों के साथ वो बातचीत करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, विग्रहों की स्थापना उन विदेशों में किया, उनको पता था कि ये लोग सेवा पूजा बराबर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने विग्रहों की स्थापना करके उनसे प्रार्थना किया कि आप अपना स्वयं ख्याल रख लीजिए और इन लोग के ऊपर कृपा करिए, मुझे विश्वास नहीं कि ये लोग कितना करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे स्थापित किया। प्रहलादानंद महाराज अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे उस समय का, प्रभुपाद जी के समय का। प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर डिसाइपल है प्रहलादानंद महाराज, जो कि अभी आज वो संन्यास मिनिस्ट्री के वो हेड है, मतलब किसको इस कौन में संन्यास लेना है देना है वो डिसाइड करते हैं। तो जब भी वो कृष्ण भावनामृत में आए थे, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, विदेश में किसी मंदिर में वो आए, तो वहां पे जब आए प्रहलादानंद महाराज तो नए थे, तो वहां पे पुजारी, जो पुजारी था वो छोड़ के जा रहा था मंदिर, कोई और मंदिर में था नहीं, पुजारी था एक ही था, और महाराज उस दिन आए और उसी दिन वो छोड़ के जा रहा था। तो तुरंत ही क्या किया उन्होंने, पुजारी ने क्या बोला, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो मैं जा ही रहा था, विग्रह वहां पे इंस्टॉल है और वो कर रहा था सेवा पूजा, अकेले था पर कुछ ना कुछ परेशानी हुआ रहेगा ऐसा, तो जा रहा था और जा रहा था उसी समय वो महाराज जी आए, उसी दिन नए थे वो ज्वाइन, मतलब आए थे मंदिर में ऐसा। तो पुजारी ने बोला कि आप क्या करिए, आप ना थोड़ा विग्रहों की सेवा करिएगा, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, बोले अरे नहीं मेरे को मैं इधर नहीं रहूंगा अभी, मैं जा रहा हूँ। बोले अरे ये सब सेवा कौन करेगा, तो ये पुजारी ने बोला कि कुछ नहीं, सेवा क्या करना है, मैं बताता ना तुम कर लेना, अरे अगरबत्ती घुमाना और उसके बाद दीप दिखाना और ऐसा करना सब कुछ मुंह से बता दिया, तो बता के चला गया। अभी तो महाराज लोग सोचने लगे कि अभी क्या क्या करे, ठीक है अभी जैसे बताया वैसा करता हूं मैं, तो उन्होंने करना है वहां पर रह गए और उन्होंने क्या आरती करना शुरू किया, भगवान का अगरबत्ती आरती कर रहे हैं, आधा घंटा अगरबत्ती किया, आधा घंटा पंचदीप किया, आधा घंटा बाकी सब सारा पंचदीप आधा आधा घंटा किया, तो 3 घंटा लग गया आरती के लिए। तो अभी 3 घंटा आरती किए, आरती करके जब आए तो सोचने लगे अभी 3 घंटा लगा आरती के लिए, और ऐसे 6 आरती है, मतलब टोटल 18 घंटा, ये कैसे पॉसिबल है? वो विचार के 3 घंटा एक ही आरती करने में लगा, क्योंकि उसने बता तो दिया था लेकिन ये नहीं बताया था कितना बार घुमाना। तो घुमाते रहे 3 घंटा तक आरती चला। और उसके बाद फिर उन्होंने विचार किया कि 6 आरती करना है, ऐसा 6 आरती करना 18 घंटा, 24 घंटा में से 18 घंटा आरती, इसलिए वो परेशान हो गया था लगता है। तो ऐसा उन्होंने सोचा, बोला नहीं लेकिन ये संभव कैसे है? तो उन्होंने फिर बाद में अन्य भक्तों से फोन कैसे भी करके, उसमें तो फोन नहीं था उतना, लेकिन फिर भी कैसे भी आदान प्रदान करके उन्होंने इंक्वायरी किया, तो पता चला कि एक आरती 20 मिनट का होता है ना। तो इस प्रकार से बताता, ऐसी स्थिति था प्रभुपाद जी ने जहां विग्रहों की स्थापना किया। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्यों ऐसा उन विग्रहों का स्थापना किया प्रभुपाद जी ने, लेकिन यही उद्देश्य के किया कि ये विग्रह जब इनके केंद्र बिंदु बनेंगे तो निश्चित रूप से इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये एक बार प्रभुपाद जी को एक लेटर आया, क्योंकि प्रभुपाद जी को जो आदान प्रदान ना वो लेटर के द्वारा ही होता था, है ना, आदान प्रदान लेटर के द्वारा। तो प्रभुपाद जी को एक लेटर आया किसी एक मंदिर से, विदेश के ही मंदिर से। तो प्रभुपाद जी को लेटर आया कि प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से मैं सेवा पूजा कर रहा हूं, है ना, तीनों विग्रहों का। तो तीनों विग्रह कौन, मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, तो वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे। लेटर में ऐसा कि मैं तीनों विग्रहों का अच्छी तरह से सेवा पूजा कर रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी मेरा एक ही प्रश्न है कि तीनों विग्रह है कौन। तो इस प्रकार की स्थिति था, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे भी प्रभुपाद जी ने इन विग्रहों की स्थापना किया। और यही प्रार्थना किया प्रभुपाद जी ने कि आप थोड़ा संभाल लीजिएगा, भगवान से यही प्रार्थना की आप संभालिएगा और निश्चित रूप से इन लोग का जो है इनके अंदर परिवर्तन आएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे जगह पे सोचिए कि अफ्रीका जैसे देश में जहां पे डाकू लोग रहते हैं, ऐसे देश में भी प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण के विग्रह का स्थापना किया। प्रभुपाद जी वहां पे एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर देते देते प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्ण काले हैं, है ना, वहां पे विग्रह भी काले और गोरे थे, तो कृष्ण काले। तो तुरंत ही सारे अफ्रीकी लोग बहुत जोर से मतलब ताली बजाने लगे, अच्छा कृष्ण हम लोग के जैसे ही है। तो प्रभुपाद जी ने बोला अरे तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जैसा, कृष्ण जो है सच्चिदानंद विग्रह है। फिर उसके ऊपर प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। तो ऐसी जगह पे भी प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण के विग्रहों को, जहां पे किसी कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको विग्रहों की सेवा में लगा के रखा। और वहां पे की स्थिति ऐसा था कि वहां पे दिन दहाड़े मंदिर में डाकू लोग का प्रवेश हुआ, है ना, पुजारी आरती कर रहा था, दोपहर का राजभोग आरती कर रहा था, और डाकू लोग मंदिर के अंदर घुस गए। और जाके डाकू ने क्या किया, डाकुओं का जो सरदार था, और मंदिर में तो कोई दिख ना रहा, ऐसे ही विदेश के मंदिर में आज भी ऐसी परिस्थिति है कि पुजारी है और एकाक दो लोग ऐसा ही, बहुत मुश्किल है, इसलिए भारत से बहुत सारे लोग जाते आते हैं इस प्रकार से। तो आरती कर रहा था वो, डाकुओं का जो प्रमुख लीडर था वो कहां पे पहुंच गया, वो पुजारी के पास अल्टर में पहुंच गया, और तुरंत ही वो गन उसके कान पे लगा दिया, है इधर लगा दिया मारने के लिए। तो उधर लगाया, लेकिन ये भी पुजारी थोड़ा से उच्च प्रगतिशील भक्त था, वो भी सोचा भाई आरती तो कंप्लीट ही करूंगा, वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, कूल एकदम माइंड से आरती करा, आरती कंप्लीट होने के बाद बात करूंगा। तो आरती कर रहा है तो जो सरदार था बंदूक तो लगाया हुआ, वो सोचा कि अरे इतना कूल है, मतलब उसको टेंशन ही नहीं है, आरती कर रहा। तो फिर उसने चिल्ला के पूछा तुम किसकी पूजा कर रहे, कौन है? तो वो बोला कि ये भगवान है। तो उसने डाकू ने पूछा कि इसके बाजू में कौन है? तो अभी पुजारी ने उसे कहा इसको राधा रानी क्या समझेगा, तो उसने बोला ये उसकी पत्नी है। तो डाकू का सरदार ने सोचा कि उसको ऐसा फील हुआ, और तुरंत क्या फील हुआ, तुरंत ही अपने बाकी मित्रों को बोला अभी चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे हम, ये बहुत अच्छा जगह है ना, ये काला 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 पति और उसका पत्नी जो है गोरी है, तो उसको उन लोग को ऐसा क्या लगा कि हमको बहुत सम्मान प्राप्त हो रहा है ना, ये लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, है ना, ये बराबर है, काले आदमी के साथ गोरी पत्नी। तो तुरंत ही वो लोग उसने वहां से निकल गए। तो प्रभुपाद जी ने अगर चाहते ना प्रभुपाद जी सत्संग हॉल बना के छोड़ सकते थे, है ना, प्रभुपाद जी हर जगह पे सत्संग हॉल बना के छोड़ सकते थे प्रभुपाद जी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने वहां पे विग्रहों की स्थापना की, केंद्र बिंदु कृष्ण को बनाया वहां पे, ताकि वहां के लोग उनसे जब जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी प्रगति होगा। और आज वही हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व स्तर पे ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा किया नहीं था, विग्रहों की स्थापना जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने किया विग्रहों की स्थापना, केवल उद्देश्य यही था कि केंद्र बिंदु जो है वो कृष्ण को बनाना है। तो इस प्रकार से कभी कभी हमको हम क्या इन विग्रहों के सामने हमको जाके संकल्प करना चाहिए, एक्चुअली प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारा जो केंद्र बिंदु आप तो है, लेकिन मैं हर एक परिस्थिति में आप ही हमारे केंद्र बिंदु है, इसको हम कभी नहीं भूले। इसलिए इस प्रकार से हमको कृपा याचना करना चाहिए। इस प्रकार से कृपा जब याचना करेंगे, जब केंद्र बिंदु कृष्ण को बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा चित्त में परिवर्तन होगा। और ये सत्संग का एक प्रमुख ये अंग है जो कि भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना। और हम जब केंद्र बिंदु उनको बनाएंगे, तभी जाके हम हमारा प्रगति भगवत धाम जाने की तैयारी हम शुरू करेंगे। जब तक केंद्र बिंदु कृष्ण को नहीं बनाए, केवल सत्संग ही नहीं, घर के अंदर भी कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना है। नहीं बनाए तो फिर हमारा प्रगति तेजी से नहीं होगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे उन्नत कोई भक्त थे ही नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको विग्रहों की सेवा में लगा के रखा, क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम था कि निश्चित रूप से भगवान एक न एक दिन कृपा करेंगे। हालांकि उसमें नए नए लोग थे, उनको तकलीफ बहुत होता था। मैं अभी की घटना बताता हूँ कि मैं जब भी मीरा रोड में था, तो एक भक्त मंदिर छोड़ के जा रहा था, तो कोई भी मंदिर छोड़ के जब जाता है तो दुख लगता है ना, क्यों जा रहा है, क्या समस्या हो गया। तो मैंने उसको पूछा, भाई क्यों छोड़ के जा रहा है मंदिर, क्या प्रॉब्लम है, कुछ आश्रम में प्रॉब्लम हो गया? बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला कुछ भक्तों से कुछ टकराव हो गया, बताओ उसको बैठ के समाधान किया जाए। नहीं नहीं, मुझे भक्तों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रसाद में प्रॉब्लम, कोई प्रसाद में दिक्कत हुआ कुछ ऐसा? नहीं नहीं, प्रसाद बहुत अच्छा था। जा क्यों रहा है फिर तुम? हाँ नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना है। तो मैंने बहुत प्रयास किया पूछने का, उसको कोई समस्या नहीं, कुछ समस्या नहीं बताया। तो मैंने पूछा कि फिर प्रॉब्लम क्या है तुमको, क्यों जा रहे हो? तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, कुछ बताया नहीं। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा सजेशन तो दे के जाइए, है ना, ताकि हम उसको अप्लाई करें अपने जो मंदिर में थोड़ा सुधार के लिए, कुछ तो बोल के जाइए। तो जाते जाते उसने क्या बोला पता है? सब कुछ ठीक है, बस केवल मंगल आरती सुबह 10 बजे कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे भी लोग थे, बताओ इस प्रकार के भी लोग थे प्रभुपाद जी के समय में, कि ऐसे ऐसे समझा लोग तब तो परिपक्व भी नहीं हुए थे सब लोग कोई, लेकिन 10 दिन का जुड़ा हुआ व्यक्ति उसको सेवा दे के प्रभुपाद जी ने लगा दिया, करोगे तो निश्चित। और ऐसे इतने उदाहरण हैं कि ऐसे लोग को प्रभुपाद जी ने तुरंत ही दीक्षा दिया, तुरंत ब्राह्मण भी दे दिया, सेवा में लगा दिया, और आज वो सन्यासी हैं। सोचिए कौन, जो विदेश में रहते और जो इस प्रकार के गलत कामों में लिप्त थे, उन लोग का इस प्रकार से प्रगति को ऐसा, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने विग्रहों की सेवा दिया, एक स्टेप आगे बढ़ के, है ना, इतना बड़ा रिस्क उठा के प्रभुपाद जी ने विग्रहों की स्थापना की, केंद्र बिंदु जो है कृष्ण को बनाया। तो हमारा आज जो पहला जो सिद्धांत है वो कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी कम्युनिटी, जो भी समाज, अगर उसका केंद्र बिंदु कृष्ण है, कृष्ण की प्रसन्नता करना को है, तो निश्चित रूप से वहां पे क्लेश और किसी भी प्रकार का अहंकार, ये सारे चीजें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला, क्या है पहला? केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण को बनाना। हरे कृष्ण। तो केंद्र बिंदु भगवान के पहला, इस समुदाय हमारा जो बैठक है, इसका विषय जो कि हमको केंद्र बिंदु जो है कृष्ण को बनाना है ना। हम जो भी कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये इस प्रकार से जब हम केंद्र बिंदु बनाएंगे, तब जाके हमारी प्रगति होगा ना, वो सही वे में होगा। तो ये पहला सिद्धांत है कि कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना। अभी दूसरा, जब केंद्र भगवान को मान चुके, केंद्र भगवान कृष्ण को बना लिया, तो अगला स्टेप आता है भक्तों का आश्रय ग्रहण करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि केंद्र बिंदु, अभी इस समुदाय को हमने केंद्र बिंदु कृष्ण को बना लिया, है ना, कृष्ण को बना लिया और फिर उनके लिए कार्य करना शुरू किए। तो दूसरा जो सिद्धांत है वह है भक्तों का आश्रय ग्रहण करना। ये बहुत ही जरूरी है,
कभी कभी हम सोच सकते हैं कि हम जो सेवा कर रहे हैं, हम जो जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारे हिसाब से सही हो, लेकिन हो सकता है कि वो गलत भी है। हम क्योंकि अपनी बुद्धि से अगर हम परखेंगे तो कि सही है कि गलत है, ये हम चुनाव करेंगे तो उसमें हम फंस सकते हैं। लेकिन जब हम भक्तों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो भक्त क्या करता है, वो सही वे सही रास्ता बताता है कि हाँ ये सही है कि गलत है ना। हम कितने भी उन्नत कोटि के भक्त हो जाए, कितने भी हमारा प्रगत हो गया, कितना भी साल भक्ति में बीत गया, लेकिन हमको भक्तों का आश्रय ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। चैतन्य चरितामृत में वासुदेव दत्त जिसको जिनको इतने बड़े महान भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि तुम ही साक्षात प्रहलाद, तुम साक्षात प्रहलाद हो ये वासुदेव दत्त। क्यों? क्योंकि तुम करुणा के निधि हो, करुणा के सागर हो। वासुदेव दत्त एक्चुअली इतने महान उच्च कोटि के भक्त थे, विशेष करके जीवों के प्रति इतना कृपालु थे कि उनको जीवों की वेदना और सहन नहीं होता था बिल्कुल। वासुदेव दत्त को बिल्कुल सहन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु से कृपा याचना करते थे कि प्रभु आप मुझे कृपा करिए, अगर मैं भक्ति में अगर आगे बढ़ गया हूं, अगर ऐसा आपको लगता है कि मैं भक्ति में मतलब प्रगति किया हूं, तो अगर आप मुझे मेरे ऊपर अगर कृपा करना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करिए मेरे ऊपर कि ये जितने भी जीवात्माएं हैं जो भौतिक कार्यों में लगे हुए पाप कर रहे हैं, उन सारे लोग को आप भगवत धाम लेके जाइए और उनके बदले मुझे नरक में डाल दीजिए। इस प्रकार का वासुदेव दत्त प्रार्थना करते चैतन्य महाप्रभु को। इतने उन्नत, इतने बड़े करुणा दिल के सागर थे वासुदेव दत्त। और ऐसे वासुदेव दत्त को भी चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि तुमको शिवानंद सेन का शरण ग्रहण करना चाहिए। सोचिए कितने उन्नत कोटि के भक्त हैं। कौन? वासुदेव दत्त। चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद का उदाहरण देते, तुम प्रहलाद हो साक्षात करुणा के, तुम्हारे अंदर जो करुणा भरा हुआ है ना वो किसी जीवात्मा के अंदर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं वासुदेव दत्त को। लेकिन वासुदेव दत्त को ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतने अच्छे गुण विकसित हैं, तुम महान भक्त हैं, लेकिन फिर भी तुमको शिवानंद सेन का शरण को ग्रहण करना चाहिए। क्यों ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि तुम एक गृहस्थ हो। वासुदेव दत्त एक गृहस्थ थे, लेकिन इतने बड़े दानी थे कि वो अपने गृहस्थ फैमिली को भी नहीं ध्यान देते थे उतना। वो सब कुछ चैतन्य महाप्रभु के कृपा के ऊपर छोड़ देते थे। उनका दिन में कुछ भी कहीं से भी आया तो उसको दान दे देते थे, वो जीवात्मा को दे देते, वो उधर परेशान तो उसको दे देते थे। कल उनको क्या खाना है, उनके फैमिली मेंबर को, उनके बच्चों को, उनको पत्नी को क्या खिलाना है, उनके पास नहीं रहता था। इतने इतने बड़े भक्त थे और सब कुछ वो दान दे देते थे, सब कुछ दे देते थे, सब कुछ करते थे, केवल केवल डिपेंड केवल कि चैतन्य महाप्रभु के भगवान की कृपा के ऊपर कि कल कैसे होगा उसके बारे में नहीं सोचते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि हालांकि वासुदेव दत्त जो है वो करुणा के सागर है, अगर उस दृष्टि में देखा जाए तो कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता है, इतने उन्नत कोटि का भक्त है वो। लेकिन कुटुंब पालन पोषण की जब बात आती है, जब यह मैं पढ़ रहा था ये कन्वर्जेशन, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि थोड़ा मेरा स्मरण आया मुझे कि चैतन्य महाप्रभु क्या इंगित करना चाहते हैं कि हम भले से कितना भी लग गए फुल टाइम भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको अगर कुटुंब पालन के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए, हमको इस प्रकार का किसी न किसी अन्य का जो उसमें सक्षम है उसका शरण को ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे वासुदेव दत्त को बोलते हैं कि शिवानंद सेन का शरण ग्रहण करो। शिवानंद सेन कौन थे? वो भी महान भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। शिवानंद सेन एक व्यापारी थे, बहुत अच्छा बिजनेसमैन थे शिवानंद सेन। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी यात्राएं होती थी सब स्पॉन्सर करते थे वो शिवानंद सेन, है ना। और चैतन्य महाप्रभु की यात्रा 2 दिन 4 दिन 10 दिन का नहीं होता था, 4-4 महीने सब ताला दरवाजा बंद करो, सब जाके पूरे में चैतन्य महाप्रभु के साथ आते थे, बड़ो संख्या में भीड़ लगती थी। और वो पूरे यात्रा का स्पॉन्सरशिप शिवानंद सेन करते थे चैतन्य महाप्रभु के। और चैतन्य महाप्रभु भी बहुत बुद्धिमान थे, हाँ यात्रा का जगह चुना भी तो पूरी चुनते थे, क्योंकि खूब कीर्तन करो, खूब डांस करो, भूख लगे तो चले जाओ आनंद बाजार में, जहां पे प्रसादम मैनेजमेंट की कोई टेंशन नहीं था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के ये यात्रा को शिवानंद सेन ये अच्छे व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो उनको स्पॉन्सर करते थे ऐसा। तो वासुदेव दत्त को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप शिवानंद सेन का शरण ग्रहण करो, उनसे सीखो किस प्रकार से कुटुंब का पालन किया जाता है, किस प्रकार से करना चाहिए। और शिवानंद सेन को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि किस प्रकार का भक्त है ना, वो कुटुंब पालन के लिए वो तो भले से शरण तो ग्रहण कर लेगा लेकिन हो सकता है कि नहीं कर पाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिवानंद सेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य मैं तुमको वासुदेव दत्त को देता हूं कि इसके कुटुंब का पालन पोषण तुम करोगे, आप इनके कुटुंब का पालन पोषण करना, आप इनकी देखभाल करना, इनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसा नहीं हम समझ सकते हैं, अपने आप को समझना चाहिए कि मैं अभी उन्नत कोटि का भक्त हो गया हूं, 5 साल से जुड़ गया हूं, मैं कृष्ण भावना में इतने 5 साल से आ चुका हूं। लेकिन सोचिए वासुदेव दत्त कितने महान भक्त थे, ऐसे भक्त को भी चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, शरण को ग्रहण करो। इसलिए भक्तों का आश्रय ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इस चीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो कभी कभी हमें लगता है कि जब हम आश्रय ग्रहण करते तो क्या अंदर क्या डर फीलिंग होता है, मतलब कैसा डर रहता है कि मान लीजिए हमको आश्रय ग्रहण करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, तो मन के अंदर ऐसा विचार होता है कि अगर मैं उसका आश्रय ग्रहण करूंगा तो हो सकता है कि मेरी जो इच्छाएं है ना, मेरा जो विचार है ना, वो बदल जाएगा। इस प्रकार का डर रहता है लोगों के अंदर। तो ये डर को निकालना है, क्योंकि आपने हो सकता है कि सोचा है कि हमारे लिए बहुत अच्छा है लेकिन हो सकता है वो आपके लिए घातक हो। इसलिए भक्तों का जब आश्रय ग्रहण करेंगे तो हो सकता है कि हम जो घातक चीज था उससे बच जाए। इसलिए भक्तों का आश्रय ग्रहण करना बहुत, हमको भले से ऐसा लगे कि वो बदल, हमारा जो डिसीजन हो सकता है आश्रय ग्रहण करने के बाद बदल जाए, है ना, वो चेंज कर दे, नहीं तुमको ये नहीं करना है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर की घटना है कि मैं इस बात को अभी बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से भक्तों का जब आश्रय ग्रहण करते हैं ना, तो हमको कैसे आश्रय को ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे इच्छाएं बदल देंगे, वो हम जो चाह रहे हैं ना वो हो सकता है कि हमसे विपरीत में बात करेंगे, है ना। भक्तों का आश्रय ग्रहण करना मतलब जितने भी हमारे गुरुदेव वैष्णव जो भी उन्नत कोटि है उन लोग का आश्रय को ग्रहण करना, विशेष करके यहाँ पे भी जो कम्युनिटी बैठा हुआ है, हम एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से एक भक्त अपना आश्रय को ग्रहण करे ऐसा, वो उसके आश्रय में वो उनको शेयर करे, वो उनको शेयर करे, और इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए ऐसा एक एक करके। तो वहां पे गौर गोविंद महाराज, गौर गोविंद महाराज के विषय में कौन कौन लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता, सुने थोड़ा बहुत। गौर गोविंद महाराज ये प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, लेकिन गौर गोविंद महाराज एक सिद्ध आत्मा थे, हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई हैं गौर गोविंद महाराज। अभी उनका शरीर नहीं रहा लेकिन आज भी ऐसे भक्तों को हमने देखा है, उन्होंने जो अभी कई सालों पहले ही उन्होंने उनका शरीर त्याग हुआ, लेकिन वो सिद्ध आत्मा थे गौर गोविंद महाराज, लेकिन वो इतने उन्नत कोटि के भक्त थे। एक्चुअली क्या है, दोपहर में मंदिर में मीटिंग था तो हम लोग एक्चुअली सास को सुबह प्रसाद नहीं लेते, मैं दोपहर को प्रसाद लेता हूँ, तो उन्होंने सुबह नहीं लिया था, आज हम दोनों साथ में बैठ के प्रसाद पा रहे थे। तो गौर गोविंद महाराज का कुछ तो ऐसा चर्चा आया तो उन्होंने बताने लगे, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने जो बताया ना मुझे, मैं बहुत एकदम हड़बड़ा गया एक्चुअली, क्योंकि मैंने एक्चुअली ये प्रवचन मैंने थोड़ा कुछ नोट कई दिनों से प्रिपेयर कर रहा था एक्चुअली, तो उसमें गौर गोविंद महाराज का ये उदाहरण मैं देना चाह रहा था, लेकिन आज प्रभु जी के साथ बातचीत हो तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चला। एक्चुअली गौर गोविंद महाराज ना एक सिद्ध आत्मा थे, वो भुवनेश्वर में रहते थे। एक बार की घटना, मायापुर में गए, मायापुर में ना वो 4 महीने तक नित्य लीला में चले गए थे, उनकी उनकी बॉडी का सेवा पूजा हुआ, उनका बॉडी को देखभाल किया गया, 4 महीने वो भगवत धाम चले गए थे, नित्य लीला में चले गए थे। जब भी वो बेहोश हो गए, जब भी लगा कि सब कुछ बंद हो गया, तो सब भक्तों को लगा कि अभी महाराज लगता शरीर छोड़ दिए, तो लेकिन उनको लेके लेटाया गया था मायापुर में। अभी की घटना है, ऐसा बहुत पुराना घटना नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रभुपाद जी के बाद और अभी भी शरीर त्याग किए, तो उनको लेटाया गया और फिर डॉक्टर को बुलाया गया, और डॉक्टर लोगों ने कुछ तो बोला कि नहीं चल, उनको कंफ्यूज हो गया, वो चल रहा है नहीं चल रहा, वो भी क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने कुछ दवाइयों को दिया और उसी समय भक्ति सिद्धार्थ महाराज के एक बहुत उच्च कोटि के भक्त वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने भीड़ को देखकर, भक्तों का भीड़ देखे और उच्च कोटि के भक्त थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ तो हुआ रहेगा, चलो जलते हैं। तो वो जाके, और जैसे ही आए ना, सब लोग जानते थे कि बहुत उन्नत कोटि का भक्त है और तुरंत ही सब लोग हट गए और वो पास में गए और पास में जाके लेट के वहां पे उन्होंने ये किया और हंसने लगे, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ये नित्य लीला गए, चले गए हुए, वो गए कभी भी आएंगे, वो कभी भी आ जाएंगे बाद में, तुम लोग वेट करो और दवाई वगैरह कुछ देना मत, क्योंकि वो सब कुछ काम नहीं करने वाला है। और वो भक्त बोल के वहां से चले गए और 4 महीने के बाद वापस नित्य लीला से वापस आ गए और वापस उठ गए और वापस प्रचार में, इतना जोरों में प्रचार में लगे बाद में। और एक बार नहीं, 2 बार नित्य लीला में गए। और जब दूसरी बार नित्य लीला में गए ना, दूसरी बार जब ऐसा हुआ, कुछ 2 महीने के लिए हुआ था, वो टाइम पीरियड भी है उसका, है उनके बारे में। तो 2 महीने के लिए जब दूसरी बार गए ना, जब वापस आए ना, वापस आए तो उन्होंने, उनका बोलना का टोन बदल गया, सब कुछ एवरीथिंग बदल गया। इस प्रकार से उनका प्रवचन आप जब सुनेंगे ना, निश्चित रूप से हृदय का परिवर्तन पक्का हो जाएगा अगर उनके प्रवचन को सुनेंगे तो। और दूसरी बार जब नित्य लीला से आया ना, उनका सब कुछ बदल गया, बोलने और चलने सब कुछ सब बदल गया, एकदम लगा कि दूसरे आ गए महाराज। तो 2 बार वो नित्य लीला में जाके वापस आए। तो गौर गोविंद महाराज, खैर हमारा अपने पॉइंट पे आते हैं कि गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में सेवा में प्रभुपाद जी ने लगा था। प्रभुपाद जी, गौर गोविंद महाराज सिद्ध आत्मा थे और प्रभुपाद जी को जब पहली बार गौर गोविंद महाराज ने देखा और प्रभुपाद जी ने कुछ बात नहीं हुआ, प्रभुपाद जी ने क्या बोला उनको, मैं आपको संन्यास दूंगा, दीक्षा बीक्षा की बात नहीं किए, प्रभुपाद जी ने क्या बोला डायरेक्ट, एक ही बात, फर्स्ट ही बात में क्या बोला, मैं आपको संन्यास दूंगा। और तुरंत ही गौर गोविंद महाराज जो छोटे बालक थे तभी, जो यंग थे, और तुरंत ही चरण में गिर गए, बोले कि ये हमारा गुरु है पक्का। क्यों? क्योंकि बचपन से उनका एक ही रट था कि मुझे संन्यास लेना है। तो गुरु वही हो सकता है जो हृदय की बात जानता है। और इसने, उन्होंने तुरंत प्रभुपाद जी का शरण ग्रहण किया। सोचिए कि प्रभुपाद जी कितने उच्च कोटि के वैष्णव थे, एक सिद्ध महात्मा ने उनके शरण को ग्रहण किया। प्रभुपाद जी भी सिद्ध महात्मा थे, लेकिन हम जैसे पापी लोग के ऊपर कृपा करने के लिए ना, उनका उस प्रकार का कुछ उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि अगर सिद्ध महात्मा होते तो भजन करके चले जाते, हमारा, हम इधर का इधर ही रह जाते। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस कलयुग के जीवों को उद्धार के लिए ना, अपने उस स्तर पर रहकर काम नहीं गया, रहे नहीं, उस स्तर पर व्यक्ति अपना केवल भजन करता है, भगवान के साथ संबंध रहता है, जैसे कि भंसीदास भौज महाराज, कोई प्रधान आ रहे गाली देते थे लोगों को, पास में नहीं आने का, दूर रहने का, तुम कर्मी है, तुम भोगी है, इस प्रकार का बोलते थे, क्योंकि उनको अपने भजन से और भगवान से ही मतलब रहता था और किसी से कुछ लेना देना नहीं। और कुछ लेना देना उनको खाने के लिए मिला नहीं मिला, जाके गंगा जी का मिट्टी खा के रहते थे, कोई लेना देना था संसार से, कुछ नहीं लेना था। लेकिन प्रभुपाद जी ने हम जैसे पापियों के ऊपर कृपा करने के लिए संसार में रह के साथ में चल के इस प्रकार का ऐसा हमको वातावरण प्रदान किया ताकि हम लोग भगवत धाम जा सके, ये प्रभुपाद जी के बिंदु थे। प्रभुपाद जी भी सिद्ध आत्मा थे, नहीं तो कभी भी एक सिद्ध आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति का शरण तो ग्रहण नहीं करेगा। गौर गोविंद महाराज अभी की ये सब घटना है कि नित्य लीला में जाके 4-4 महीने बाद वापस आ रहे हैं, वो बॉडी वापस फिर से प्रचार कर रहे हैं, ऐसे महात्मा प्रभुपाद जी के शरण को ग्रहण के कैसे हो सकता है, संभव पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था कि ये कौन है ऐसा। तो खैर आगे बहुत डिटेल है, कभी चर्चा करेंगे महाराज के ऊपर। तो उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा पता है, क्लास दे रहे, भागवत दे रहे, क्लास देते 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 देते, और चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम था उनको, गौरांग महाप्रभु के उस प्रेम को जानकर, उनकी कृपा को जानकर, इस प्रकार का वर्णन करते 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 उनकी आंखों से इतना आंसू गिरने लगा कि उनका वो वाणी अवरुद्ध हो गया और तुरंत ही बोलने लगे अब मैं नहीं बोल पाऊंगा। तुरंत उनका बचपन से ही गोपाल जो था, गोपाल विग्रह, वो बहुत पास में रखते थे अपने गोपाल को, विग्रह को, तो तुरंत ही बोले मेरे गोपाल को लेके आओ, और गोपाल को लेके आओ और उनसे कुछ बातचीत किया। गोपाल से बातचीत करते 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 प्रवचन दिया सबको, 45 घंटा तक प्रवचन दिए, और उसके बाद इस प्रकार से रुक के और गोपाल को देखते 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 शरीर त्याग दिया, छोड़ के चले गए भगवत धाम। ये अभी की घटना है, पुरानी घटना नहीं है। तो इस प्रकार से आज भी हमारे बीच में ऐसे वैष्णव उपस्थित है, ऐसा नहीं है हम। तो इस प्रकार से गौर गोविंद महाराज, शुरुआत की बात है, जब भी भुवनेश्वर में प्रचार कार्य में प्रभुपाद जी ने उनको भुवनेश्वर संभालने के लिए दिया था, तो प्रभुपाद जी ने उनको विशेष करके एक सेवा दिया था कि बुक्स को लिखना, तो इंग्लिश से उड़िया में बनना, उड़िया थे महाराज, उड़ीसा के थे, तो इंग्लिश से उड़िया में ट्रांसलेट करने की सेवा प्रभुपाद जी ने था। उस समय प्रभुपाद जी वहीं पे कुटिया बना के रहते थे भुवनेश्वर में ही, और प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज को यह सेवा दिया था कि आप बुक्स को उड़िया में भाषा में ट्रांसलेट करो। और प्रभुपाद जी बुक्स को लेकर ना बहुत सीरियस रहते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि बुक्स का जितना भी प्रकाश जितना जल्दी होगा ना, जैसे उड़ीसा में अभी उड़िया में जितना जल्दी प्रकाशित होगा उतना ही लोग को लाभ मिलेगा, इसलिए प्रभुपाद जी बुक्स के ऊपर बहुत ध्यान देते थे कि कैसे किस प्रकार से बुक्स का प्रिंटिंग हो, जल्दी से जल्दी छप जाए। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि बुक्स का काम बहुत स्लो चल रहा है, बुक्स का काम बहुत स्लो चल रहा है, तो प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज को बुलाया, उनको बुलाया कि क्या कर क्या रहे हो, मैंने आपको सेवा दिया हो बुक्स का आप बहुत स्लो चल रहा है। तो बोले कि प्रभुपाद अरे कोई है ही नहीं मैनेजमेंट करने के लिए, पूरा मंदिर मुझे देखना पड़ता है, सब कुछ मैं एक पूरा दिन मैनेजमेंट करता हूँ, पूरा दिन सेवा रहता है, कोई है ही नहीं, कौन करेगा, वो सब करते हुए भी मैं जितना होता है टाइम उतना लिखता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इस प्रकार की बात मत करो, मैनेजमेंट कोई भी कर लेगा, तुम बुक्स लिखो, क्योंकि बुक्स कोई और नहीं लिख सकता है, तुम बुक्स लिखो क्योंकि बुक्स और कोई नहीं लिख सकता है, मैनेजमेंट कोई और कर सकता है। तुम्हारा सोचे कौन, कोई है ही नहीं तो कौन करेगा। तो प्रभुपाद जी ने तभी उधर से एक भक्त जा रहा था, विदेश का एक भक्त था, उधर से जा रहा था, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मैनेजमेंट उसको दे दो। प्रभुपाद जी ने हमेशा ऐसा ही किसी के ऊपर कृपा किया, विदेश में भी गए ना, वो पकड़ लिया, उसको दीक्षा दिया, ब्राह्मण भी बना दिया, तुम सेवा करो अभी। तो प्रभुपाद जी बोला उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको मैनेजमेंट दो। तो गौर गोविंद मैम प्रभुपाद वो कल जा रहा है न्यूयॉर्क, उसका टिकट हो चुका है, वो जा रहा है अभी इधर से। तो प्रभुपाद जी ने कोई बात नहीं, उसको बुलाओ, हम उसके प्लान को बदल डालेंगे। तो गौर गोविंद महाराज बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, आप बदलिए, मैं बुला के लाता हूँ। गए महाराज, उसको बुला के लाए और प्रभुपाद जी को जैसे ही बोले कि प्रभुपाद जी बुला रहे हैं, तो तुरंत ही उसके मन में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है ना। कभी कभी ऐसा था ना कि किसी से मैसेज देते हैं प्रभु जी की, प्रभु जी आपसे 2 मिनट मिलना चाहते थे, फिर तुरंत ही घंटी बजने लगता है, कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ तो होगा, क्या बात है ऐसा, इस प्रकार का। तो सोचने लगा कुछ तो लोचा होगा अभी। तो इस प्रकार से वो भक्तों को बुलाए और वो भक्त आया प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी ने बोला मैं चाहता हूँ कि आज से तुम भुवनेश्वर मंदिर का मैनेजर बनो और मैनेजमेंट संभालो। तो वो हड़बड़ा गया, बोला कि प्रभुपाद जी मैं कल जा रहा हूँ, मेरा टिकट है न्यूयॉर्क का, मैं जा रहा हूँ अमेरिका। बोला क्यों जा रहे हो? कि मुझे यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, वेदर सूट नहीं हो रहा है ना, विदेशी लोग को एक्चुअली विशेष करके गर्मी में ना तो यहाँ जल जाता है। हम लोग भक्ति शास्त्री 4 महीने वृंदावन में किए थे, तो विदेशी लोग वहां से भाग जाते थे, एक्चुअली उनका चमड़ी जल जाता था गर्मी से बहुत, मतलब रहते थे वृंदावन, बाकी समय वृंदावन में रहते थे। जो गर्मी का महीना आया ना, यहाँ तक कि एक महाराज है विदेश के ही है, रहते है, वो मैनेजमेंट करते है वृंदावन का लेकिन वो गर्मी हुआ तो उधर से तो भागे जाते हो, जो 3 महीना 3-4 उधर रह के आते हो, क्योंकि जब चमड़ी बूढ़ी सब जलने लगता है, मतलब सहन नहीं होता उन लोगों को। तो वक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी यहाँ का वेदर ना मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ज्यादा टाइम रहोगे तो सूट करेगा, रहो इधर आदत पड़ जाएगा, ज्यादा टाइम रहोगे ना तब सूट करेगा, ऐसा भी थोड़े ही दिन रहा है ना, ज्यादा समय रहोगे सब सूट हो जाएगा, चिंता मत करो। नहीं प्रभुपाद जी एक्चुअली मुझे यहाँ पे प्रसादम वगैरह ये सब ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने बोला चिंता मत करो, मैं तुमको लिस्ट दूंगा, बराबर सब कुछ पचन होगा, चिंता मत करो। तो एक्चुअली उसको जाना था, उस बोला प्लान कर रहा है कैसे करके तो निकलना है, अभी कल का हो गया है टिकट। बोला नहीं प्रभुपाद जी मुझे एक्चुअली यहाँ पे यहाँ का मैनेजमेंट मुझे नहीं जमता है यहाँ का मैनेजमेंट, चिंता मत करो तुम्हारे लिए मैं मैनेजमेंट बदल दूंगा आज से, लेकिन तुम यहाँ पे रुको। तो सब तरीके से उसने प्रयास किया, प्रभुपाद जी ने सबका उत्तर दिया और उसने सोचा कि चलो अभी लास्ट कुछ तो ऐसा करते हैं जाकि ताकि यहाँ से निकले, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और ब्रह्मास्त्र क्या है? बोला प्रभुपाद जी यहाँ पे मैं रहता हूँ, दिन भर सेवा रहता है मेरा, क्योंकि कोई है ही नहीं, दिन भर सेवा रहता है, रात को भी सेवा रहता है, मेरा जप ही नहीं होता है, इसलिए मैं कम से कम अमेरिका जाऊंगा तो वहां पे शांति से बैठ के कम से कम जप तो करूंगा। प्रभुपाद जी ने बोला अगर तुम दिन में रात में पूरा समय बीजे हो तो तुमको जप करने की जरूरत नहीं, तुम यही का मैनेजमेंट करो, चलो। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस समय उस भक्त के लिए बोला था, आज हम ऐसा नहीं पकड़ के बैठेंगे, प्रभुपाद जी ने बोला था कि ऐसा किया, हमको नहीं पकड़ के बैठना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसकी इच्छाओं को बदल दिया, उसके प्लान को, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम गुरु के पास जाते हैं ना, तो हम कुछ सोचते हैं, तो हो सकता है कि हमारा बदलाव उसमें हो सकता है, लेकिन वो हमारे हित के लिए होता है। तो इस प्रकार से जो है ना, हमको भक्तों का जो आश्रय जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आप सोचिए, इसको याद करिए कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या किया है, किस प्रकार से हमको कितना हृदय पूर्वक प्रभुपाद जी के इन आश्रय को ग्रहण करना है, गुरु के आश्रय को ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से जो पहला है इस कम्युनिटी सत्संग का जो केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण, और दूसरा क्या है, जब केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण को बना लिया तो अभी क्या करना है, भक्तों का आश्रय ग्रहण करना है। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, जो कि बहुत कठिन है और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा, वो क्या है, भक्तों को श्रेय देना, क्रेडिट, है ना। ये हम कृष्ण भावनामृत में आने से पहले ना, हमने कभी तो किया ही नहीं रहेगा, ये तो पक्का है। क्योंकि मान लीजिए कोई, अगर हम कृष्ण भावनामृत छोड़िए, बाहर रह रहे हैं, है ना, कोई आके हमारा ग्लोरीज करता है, अरे जितना तुमने कितना अच्छा काम किया, तो भी क्या करता है, हाँ मेरे अंदर काबिलियत है, मैं करता हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं तो और भी बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा, अरे मैंने बराबर है, आपने सही बोला, काम ये थके, लेकिन ये आपकी कृपा से हुआ है, ये हमने कभी किया नहीं है, लेकिन ये हमारे वैष्णव समुदाय में आने के बाद ये हमको करना है। एक भक्त को दूसरे भक्त को श्रेय देना है कि आपकी कृपा से ये सब हो रहा है ना, आपने कृपा किया तभी ये सब संभव हो रहा है। हमें हमेशा गुरु परंपरा, वैष्णव गुरु महाराज, है ना, भक्तों को हमेशा याद रखना चाहिए, उनको प्रभुपाद जी को हमेशा याद करना चाहिए कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने क्या, उनको हमेशा श्रेय देना चाहिए, है ना, क्योंकि उनकी कृपा से, गुरु वैष्णव भक्तों की कृपा के बिना हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। यह कृपा उस ईंधन की समान है, जैसे कि मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद के लाया, आज गाड़ी खरीद के लाया, लेकिन वो गाड़ी क्या स्टेयरिंग से चलता है, उसमें पार्ट से चलता है, या पहिया लगा उससे चलता है, उसमें क्या डालेंगे, जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगा, भले से नया गाड़ी है लेकिन पेट्रोल डालने के बाद ही चलेगा। तो जब तक उसमें ईंधन नहीं डालेंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगा। तो गुरु वैष्णव और जो भक्त है ना, ये ईंधन के समान है, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हमारा गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाला है। इस बात को हमेशा याद करते रहना चाहिए, और प्रभुपाद जी को याद करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को श्रेय देना चाहिए, तभी आपस में क्लेश नहीं आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए, अभी प्रेजेंट का उदाहरण कुछ देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भक्त ने बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ, जो कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि अरे प्रभु जी आप कितना अच्छा ये सब सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य होता है, हमको ये सोचना है कि ये सब ना आप लोग की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, क्योंकि कृपा को याद करना चाहिए कि आप लोग की ही कृपा से ये सब संभव है। क्योंकि जब तक वैष्णव गुरु अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी किसी भी प्रकार का भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, है ना। हम कभी भी भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते हैं, वो भावुकता होता है। केवल हम कृष्ण के भगवान के साथ हम जाएंगे, हम आदान प्रदान करेंगे और शुरुआत में हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। वो टिकता तब है जब हम भक्तों की आश्रय ग्रहण करते हैं, भक्तों की संगति में जाते हैं, तब जाके वो टिकता है, नहीं तो व्यक्ति टिकेगा नहीं। इसलिए कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो आते हैं मंदिर, यहाँ पे दर्शन करते हैं, कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं कहीं और दर्शन के लिए, फिर कुछ दिन बाद उधर जाते हैं, कभी फिर इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भक्तों का संगति नहीं मिला, भक्तों का आश्रय नहीं ग्रहण किया, इसलिए क्या है वो इस प्रकार से भटकते रहते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको एक भक्त को दूसरे भक्तों को श्रेय देना चाहिए कि आपकी कृपा से हो रहा है, है ना, ये मेरे अंदर एक काबिलियत नहीं, आपकी संगति, आपकी कृपा हुआ, आप इस प्रकार का कृपा की हमारे ऊपर, इसलिए संभव हुआ। तो इसलिए हमको हमेशा भक्तों को क्रेडिट देना चाहिए, है ना, उनको श्रेय प्रदान करना चाहिए, है ना। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु और रामानंद का संवाद पढ़िए, वहां पे चैतन्य महाप्रभु रामानंद के पास जाते हैं और उन्होंने बोलते हैं कि आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, है ना, इस प्रकार से आप कैसे भक्ति में प्रगति करना है। रामानंद राज से चैतन्य महाप्रभु जाके उनके शरण को ग्रहण करते हैं, तो उस समय रावण आनंद बोले, प्रभु अब ये क्या कर रहे हैं, आपकी कृपा से उन्होंने उनका शरण गया, अभी क्या बोल रहे हैं, आपकी कृपा से मेरी जो बुद्धि है, जो भी मैं कुछ बोलता हूं, क्योंकि वो बहुत अच्छे ज्ञानी थे रामानंद राय, तो ये जितने भी हमारे अंदर ज्ञान है, जितने भी गुणों का विकसित है प्रभु, ये तो सब आपकी कृपा से है, आपकी कृपा से सारे कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पे भेजे, कौन भेजे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने भेजा है, उन्होंने कृपा किया हमारे ऊपर, अभी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं उन्होंने हमारे ऊपर कृपा किया, इसलिए मैं आपके पास आया। और ऐसा है नहीं, हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी सन्यासी थे, चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार करके आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं आपके पास आया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया था, लेकिन इस प्रकार की नम्रता, भक्तों को श्रेय देना, ये इससे यहां से चीज हमको सीखना चाहिए। एक भक्त का घटना याद हुआ कि लोकनाथ महाराज के एक डिसाइपल है, बहुत कुछ समय पहले वो मेरे से मिले थे, तो अपने एक्सपीरियंस वो बता रहे थे किस प्रकार से भक्ति मार्ग, ये चीज भी हम करेंगे एक्चुअली, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम कैसे आए, प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बोलते थे कि भक्ति मार्ग में टिकना आपको लॉन्ग टाइम, तो हमेशा अपने मूड और मेंटेलिटी को एक न्यू भक्त के जैसा बना के रखने का, आप नए किस उत्साह में जुड़े थे उसको हमेशा मेंटेन करके रखने का, शुरुआत में हम किस उत्साह में जुड़े हुए थे उसको हमेशा मेंटेन, उसको याद करिए हमेशा, तब जाके आप कृष्ण भावनामृत में टिके रह सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में आना बहुत आसान है, टिकना बहुत कठिन है ना, आप टिके तब रह सकते हैं, कब रह सकते हैं टिके, तो इस प्रकार से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो मैं हम इस बात को हम एक एक भक्तों का जानेंगे, कभी कभी हम ऐसा चर्चा करेंगे है ना, कि आप कैसे जुड़े भक्ति मार्ग में है ना, कैसे आए कृष्ण भावना, इसको याद करेंगे, क्योंकि इसको याद करेंगे ना तो हमको प्रेरणा मिलता है, और दूसरे भक्तों को प्रेरणा मिलता है कि हम क्या थे, क्योंकि सोचिए कभी कभी ऐसा फीलिंग होने लगता है कि अरे हम इतना दिन से कर रही हूँ आज तुम्हारा प्रगति नहीं हुआ, लेकिन आप जब भी शुरुआत का जब कृष्ण भावना में आए तो वो सीन याद करेंगे ना, तब पता चलता है कि नहीं मैं वहां पे था अभी यहां तक पहुंचा हूं है ना, तो इसको हमें याद रखना चाहिए। इसलिए जो है ना भक्तों की किस प्रकार से हम नए हमेशा न्यू भक्त मेंटेलिटी हमेशा बना के रखना चाहिए अगर अपने को भक्ति में टिकना है। तो भक्त अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं जब कॉलेज में था, बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में था, तो मैं बेस में रहता था, और उस बेस में मंदिर से कुछ भक्त लोग आके प्रचार करते थे, और नियम यह था कि हफ्ते में आते थे और जो एक माला जप करता था उसको प्रसाद खिला के जाते थे है ना, क्लास होता था और फिर प्रसाद खिला के जाते थे, उन भक्तों का ऐसे हुआ था। तो बोल रहे थे मैंने बहुत अटेंड किया, और एक फोकट का खाने के लिए मिल रहा था, कौन नहीं जाएगा, और एक ही माला करना है ना तो कोई बात नहीं, एक माला जप लेंगे, वो एक माला जप करके खाने के लिए जाते थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो लेकिन क्लास सुनते थे, लेकिन क्लास में वो बोल रहे थे क्लास यही होता था, दुखालय शाश्वतम, ये भौतिक संसार दुखों कालय है ना, यहाँ पे कष्ट ही कष्ट है ना, यहाँ पे कोई सुख नहीं है, सत्य है, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं है ना, तो प्रवचन तो यही होगा ना, तो बार बार इस प्रकार का प्रवचन हो रहा था, तो उसको वो बोल रहे थे कि मेरे को उस समय ऐसा लगता था ये लोग फर्स्ट एड हो चुके हैं, इसको इनको संसार यही दिखता है, दुखी एकदम फर्स्ट एड हो चुके हैं, फर्स्ट एडेड लोग हैं, इसलिए मतलब उनको यही निकलता है हमेशा कि संसार जो है दुखालय हमें दुखो काल है, तो इस प्रकार का वो सोचते थे। लेकिन खैर ठीक है, एक ही माला करना है, बाद में प्रसाद मिलने वाला है, तो प्रसाद खाते थे चले जाते थे। इस प्रकार से पूरा बेस निकाले, उन्होंने पढ़ाई किया, उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया, तो बहुत सारे अभी गीता आ गया था घर में, सब कुछ हुआ था, लेकिन कभी पढ़ा नहीं उन सब चीज को पूरा, कितने सालों तक एक प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया लेकिन कोई चेंजेस नहीं। तो बाद में फिर पढ़ाई किया, पढ़ाई करके कंप्लीट हुआ, फिर बाद में पढ़ाई के समय में भी है ना, पढ़ाई उस समय समकक्ष के जो भी साथ में पढ़ने वाले लोग रहते उनके साथ कुछ ना कुछ क्लेश तो होता ही है, तो वो क्लेश होता था तो वो स्मरण करते थे, इस बात को स्मरण करते थे कि सच में दुखालय में क्या, इस बात को मतलब सुने थे ना बार बार, तो स्मरण करते कि लगता है सच में दुखालय में, देखिए यहाँ पे भी क्लेश है, इस प्रकार का समस्याएं हैं। तो किसी ने बोला कि अरे कुछ नहीं ऐसा, ये सब अभी क्या पढ़ रहे हो ना, सब इस प्रकार का तकलीफ होगा, एक बार नौकरी लग गया ना तो सब ठीक हो जाएगा, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। तो पीएचडी किया, नौकरी भी लग गया, कहाँ नौकरी लगा? विदेश में लगा, अमेरिका में नौकरी लगा, अमेरिका में नौकरी में सेट हो गया। उधर कुछ सालों के पश्चात वहां पे भी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी छोड़ेगा नहीं भौतिक संसार। भौतिक संसार का जो क्लाइमेट ही है ना, वो दुख का ही है एक्चुअली। वो आप कहीं पे भी जाए, वो किस प्रकार से है, मृग तृष्णा बोलते हैं ना, एक प्यासा मृग जो है ना, वो रेगिस्तान में किधर भी जहां पे पानी नहीं है, वो देखते हैं कभी कभी दूर से दिखता है कि वहां पानी है, लेकिन वहां पे जाने के बाद कुछ नहीं पता चलता है, वो पानी नहीं है, है ना, चमकता है पानी की तरह। ऐसा ही है, हमको लगता है कि वहां जाने से, एक करने से हमको सुख मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में वहां पे सुख नहीं है। तो इस प्रकार से वो नौकरी लग गया तो वहां पे भी कुछ सालों के बाद क्लेश शुरू हो गया। बहुत डिस्टर्ब होने लगे, है ना, बहुत डिस्टर्ब होने लगे। बोला कि अरे ये मुझे पक्का अभी धीरे धीरे हो रहा है कि दुखालय में सांस होता हूं। वो व्यक्ति फर्स्ट एड नहीं था जो आके बोलता था दुखाल दुख को गया, तब तक किसी ने फिर से प्रवचन दिया। बोला अरे ऐसा नहीं है, क्या है ना, अभी नौकरी तो हो गया, पढ़ाई किया तुमने, नौकरी कर लिया, अभी शादी कर लो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या किया उन्होंने, शादी कर लिया, और फिर सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया उनको है ना, कि दुखाल है मसास होता मैं, एक क्लियर हो गए एकदम से हाँ सबका एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है तो क्लियर हो गया सभी। वो जान गए कि अभी दुखालय में सास सुतम है। फिर उन्होंने क्या किया, उस समय जो गीता दिया गया था उसको पढ़ के खोला, दुखालय में सास सुतम खोला, प्रभुपाद जी का परपट पढ़ा, सब कुछ पढ़ने के बाद, ये सब करते करते, ये सब हो चुका है, 12 साल बीत चुका करते करते, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, 11-12 साल निकल गया। तो अभी पढ़ा और फिर तो बोला कि सच में संसार दुखालय में, कुछ भी हो अभी लेट ही सही, लेकिन कुछ भी हो अभी तो हमको जाना चाहिए। तो वहां के अमेरिका के एक मंदिर में लगुना बीच करके है, जो कि बहुत फेमस है, आप लोग सर्च मत मारिएगा, क्योंकि वहां पे वो जो बीच है ना, वो केवल सारे प्रकार के भौतिक इंद्रियों भोग करने के लिए फेमस है। वहां पे अपना इस्कॉन का मंदिर है बीच के सामने ही, वहां पे कौन है पता है, पंच तत्व है, भगवान चैतन्य पंच तत्व है, पंच तत्व है। उस मंदिर का रिकॉर्ड है कि ड्यूटी से ज्यादा ड्यूटी हुए ही नहीं वहां पे है ना, विग्रह पांच है लेकिन ड्यूटी एक है। आते थे बहुत लोग, तो अभी आते थे कई सारे लोग आते थे, प्रचार मूवमेंट है, प्रभुपाद जी ने प्रचार के लिए बोला है, प्रचार करने जाते थे, प्रचार के कितने सारे भीड़ बढ़ रही हुई है, प्रचार करने के लिए जाते थे, पता चला प्रचार करने गए और अन्य लोगों की सुगम यात्रा तो इस प्रकार से वो उस जगह पे पहुंचे, क्योंकि वहां पे नजदीक में थे वो, तो वहां पे वो वहां के मंदिर में गए। तो वहां के मंदिर में गए तो जाके जैसे ही मंदिर में पहुंचे, कौन भक्त दिखाई दिया जो 12 साल पहले उनको बेस में आके प्रसाद खिलाता था, वो भक्त दिखाई दिया उनको, तो तुरंत तो एकदम पूरा खुश हो गए एकदम पूरा आलिंगन कर लिए जाके, प्रभु आप पहचान रहे हो मुझे, मैं वही हूँ, आप प्रसाद देने आते थे ना, वही हूँ मैं, लेकिन आज ऐसे ऐसे करके, मैं उस समय समझा नहीं, लेकिन आज समझ गया हूँ कि दुखाल है महसास होता मैं, आप लोग फ्रस्ट्रेशन नहीं थे, ये सही बात था। तो बोले कि अच्छा, तो फिर अचानक ये सब कैसे हो गया, बदलाव कैसे आ गया? तो बोले कि इस प्रकार का पूरा उसने अपना घटना बताया। तो प्रभु ने बोला, कभी कभी ना प्रसाद को पचने में 12 साल लगता है तो निश्चित रूप से कृषि जीवात्मा को अगर हम प्रसाद खिलाते हैं तो निश्चित रूप से उसका, इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके हर मंदिर में कोई आए तो भूखा ना जाए, उनको कुछ न कुछ देना दिया जाना चाहिए, चरणामित हमेशा रहना चाहिए, और साथ साथ में जो मंदिर सक्षम है तो कुछ न कुछ हमेशा खिचड़ी, पूरा दिन खिचड़ी बांटते हैं, और कभी कभी तो चरणामित के पास रख के कुछ न कुछ हलवा प्रसाद हम इस प्रकार का भी देते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा उनकी इच्छा थी कि इस मंदिर में कोई भी आए तो भूखा नहीं जाना चाहिए, उसको प्रसाद मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि प्रसाद मिलने व्यक्ति खाया तो निश्चित रूप से एक न एक दिन उसके चित्त का परिवर्तन तो होगा ही, वो एक अज्ञात सुकृति बनता है, भले से एक ही बार खाया लेकिन हो सकता है कि वो कितने साल बाद वापस आ जाए। तो ये प्रभुपाद जी को अच्छे, इसलिए प्रभुपाद जी जाते चाहते थे कि यहाँ पे तो इस प्रकार से हमको अभी कौन सा वर्णन किया हमने, हाँ, तो इस प्रकार से वो ये बोल रहे थे कि कितना खुश हुए उन भक्त से मिलने के बाद, उनको कितना श्रेय देने लगे, कितना उनको खुशी की सीमा नहीं रहेगी, वो बोल रहे थे कि मैं एंट्री किया, जैसे वो दिख गए मुझे तो मैंने मुझे पूरा याद आने लगा कि कितना मेहनत किया इन लोगों ने हमारे लिए, तो इसलिए उनके प्रति इतना कृतज्ञता व्यक्त किया उन्होंने। तो इस प्रकार से वो अपने एक्सपीरियंस को वो बता रहे थे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें एक दूसरे भक्तों को श्रेय देना, एक दूसरे क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद समय हो रहा है लेकिन कंप्लीट करें, है ना, कंप्लीट करते हैं, चलेगा? भरत प्रभु बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि भरत प्रभु मंगल आरती आते हैं, बाकी सब लोग आराम से सोइए, कोई बात नहीं है, तो लेट होगा तो सुबह लेट उठिए, हैं? अगली बार ले, हैं? अभी तीन हुआ नहीं तो पूरा ही लेंगे ना, तीन ही बचा है ना, तो ज्यादा समय नहीं लेते, खत्म करते हैं। कितने बजे तक बताओ आप रुकोगे? ठीक है, 15-20 मिनट में जितना खत्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, बाद में फिर चर्चा इसके ऊपर करते ही रहेंगे, है ना। तो अभी हमने भक्तों को श्रेय देना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद चौथा, अगर इस सत्संग को आगे बढ़ाना है, इस कम्युनिटी को, अपने भक्त समूह को आगे बढ़ाना है, तो एक साथ मिलकर सबको सेवा करना, को ऑपरेट, केवल ऑपरेट नहीं, को ऑपरेट बहुत जरूरी है। ये चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत, क्या? एक साथ मिलकर सेवा करना, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है विषय, है ना। हमारे मन में इस प्रकार का विचार होना चाहिए कि हम एक दूसरे भक्तों का सहयोग करें, उनके साथ में मिलके सेवा करें, है ना। एक भक्तों को किस प्रकार से हमको आगे बढ़ाएं, अगर मान लो कभी कभी भौतिक संसार में कैसा होता है कि कोई व्यक्ति प्रगति कर रहा है तो उसके टांग को लोग खींचते हैं, उसकी निंदा करते हैं, कुछ ना कुछ वो चाहते हैं कि वो बढ़े ना आगे। लेकिन हमारा कृष्ण भावना रूप में इस प्रकार की मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए हमको। हमको कोई भक्त अगर सेवा कर रहा है तो उसको हमको साथ देना चाहिए ताकि वो अच्छे से और सेवा करे। तो एक केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बोझाना जा रहा, हर एक भक्त एक दूसरे भक्त को सपोर्ट करे, क्योंकि हर एक भक्त किसी न किसी सेवा से कनेक्टेड है। तो हर एक भक्त दूसरे उसकी सेवा को इस प्रकार से उनको ये करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए कि आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं, ये जो वैष्णव जो सत्संग है ना, ये जो वैष्णव सत्संग है, वैष्णव का जो समुदाय है ना, एक अस्पताल की भांति है, और उस अस्पताल में हम जो है पेशेंट है, और हमारे लिए मेडिसिन क्या है? महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये जो वैष्णव समुदाय, वैष्णव सत्संग है ना, एक हॉस्पिटल की तरह है, इसमें हम पेशेंट है, और हमारा हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट है, और उसका जो पेशेंट का इलाज है वो महामंत्र है। जैसे मान लीजिए रोड पे बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, रोड पे बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग रोड पे पड़े हुए हैं, तुरंत क्या होता है, एम्बुलेंस जाता है उनको लेके, कहां पे लेके आता है, हॉस्पिटल में लेके आता है, कहां पे रखता है उनको, आईसीयू में। तो सोचिए कि अभी उसको लेके आईसीयू में डाला गया, तो आईसीयू में कितना को ऑपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि एक क्षण भी उस व्यक्ति का मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर वो व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है और वहां पे डॉक्टर और नर्स के अंदर क्लेश अगर चले, वो एक दूसरे को ऑपरेट नहीं करे, तो क्या होगा, उसके जीवन और मृत्यु का है ना, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक उस आईसीयू के अंदर क्या होगा, उसका जान जा सकता है, मृत्यु हो सकता है। सोचिए, है ना, वहां पे कलह नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ये जो वैष्णव समुदाय है ना, हमारा जो बैठक, हमारी जो गोष्ठी है, ये इसी आईसीयू की तरह है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हृदय, हार्ट को खोला गया है। तो जब भी किसी हॉस्पिटल में हार्ट को खोल दिया जाता है, अभी उसका ट्रांसप्लांट चला, तो वहां पे कलह हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं हो सकता, कितना वहां पे सतर्कता बरतना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे भक्त अपने, सारे लोग अपनी श्रद्धा को लेकर आए हैं, और अपनी श्रद्धा को विकसित करते हृदय का परिवर्तन करने आए हैं। सब सब ऑपरेशनों में से हार्ट ऑपरेशन जो होता है बहुत क्रिटिकल होता है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना सब में से, तो यहाँ पे हार्ट को खोला गया है, तो हार्ट को खोल दिया गया है तो कैसे कला हो सकता है? हमको ये समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि वो व्यक्ति अपने श्रद्धा को लेके आया हुआ है, श्रद्धा को लेके आके अपने हृदय को परिवर्तन करना है ना, अपने हृदय को ही तो चेंज करना है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हर एक जीवात्मा के हृदय में कृष्ण प्रेम नित्य रूप से है, हर एक जीवात्मा के, चाहे वो कर्मी भौतिकवादी कोई भी हो, चाहे वो भक्त हो, सब लोग के अंदर पहले से कृष्ण प्रेम जो है ना वो सुप्त अवस्था में है, लेकिन उसको जागृत करना है। और वही हम इस वैष्णव इस भक्त मंडली में आके वही कर रहे हैं, हम हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। तो कैसे वहां पे कला नहीं हो सकता है? वहां पे कला करने का विचार भी नहीं रखना चाहिए। और एक कला तभी नहीं होगा जब हम सेंटर जो है केंद्र बिंदु कृष्ण को बनाएंगे, तभी नहीं होगा, नहीं तो कला निश्चित रूप से होगा। जब कृष्ण के लिए हर एक कार्य होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर एक कार्य होगा, तो वहां पे कला नहीं होगा। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि इस प्रकार से जो यह जो वैष्णव समुदाय है, एक ये हॉस्पिटल की तरह है, हम यहाँ पे पेशेंट बन के आए हैं, अपने हृदय को चेंज करने आए हैं, तो हमको इस प्रकार से एक दूसरे भक्तों को कोऑपरेट करना चाहिए, है ना, सहयोग देना चाहिए, एक दूसरे भक्तों को सहयोग करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कैसे सहयोग देना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र के ऊपर, महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा नहीं कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। क्यों कृपा नहीं कर रहे थे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और प्रताप रुद्र कौन था? एक राजा थे। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं सन्यासी हूं, किसी राजा से नहीं मिलूंगा, मैं उसके ऊपर कृपा उसके उसको देखूंगा तक नहीं। लेकिन प्रताप रुद्र महाराज को जब ये बात पता चला तो प्रताप रुद्र महाराज बहुत रोने लगे। उन्होंने इस प्रकार का बोलने लगे भक्तों के समुदाय में, है ना, भक्तों के समुदाय में जाके इस प्रकार से अपने फीलिंग्स को व्यक्त किया। लगता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम से ही डिसाइड करके आए हुए कि पूरे संसार का उद्धार करेंगे, लेकिन प्रताप रुद्र का उद्धार नहीं करेंगे। मैं इतना बड़ा पापी हूं क्या? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार किसके लिए हुआ? पापियों को उद्धार करने के लिए। लेकिन मैं कितना बड़ा पापी हूं कि चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे? इस प्रकार से वो वैष्णव समुदाय के अंदर आकर भक्तों के बीच में आकर अपने इस दुख को उन्होंने व्यक्त किया। तब सब भक्तों ने क्या किया? एक दूसरे से मिलकर कोऑपरेट किया उनको, और सब लोग मिलकर, कभी कभी ऐसा होता है कि चलो उसको दिखाया वो अच्छा है, अच्छा हुआ उसको कृपा नहीं मिला, इस प्रकार का हम सोच रखते हैं, ऐसा नहीं रखना चाहिए। तो अभी सब भक्तों ने मिलकर क्या किया? प्रताप रुद्र को इस वेदना को उन्होंने क्या किया? प्लान किया, विशेष करके रामानंद राय ने प्लान किया कि इसको किसी न किसी तरह चैतन्य महाप्रभु का कृपा दिलवा कर आएंगे। तो भक्तों ने प्लान किया, एक दूसरे को सहयोग किया, कोऑपरेट किया, और वो क्या किए? चैतन्य महाप्रभु को जाके प्रताप रुद्र के बारे में बताकर कैसे कर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास तक पहुंचाया। तो इस प्रकार से हमको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और हमको मतभेद तो स्वाभाविक है भौतिक जगत का, मैंने बोला ना भौतिक जगत का वेदर ही ऐसा बनाया कि मतभेद तो होगा ही, ठीक है। आप सोचिए महाभारत में कौरवों के बीच में मतभेद बहुत कम मिलता है, पांडवों के बीच में बहुत मिलता है, बहुत सारे पांडवों के बीच में बहुत मतभेद हुआ, कौरवों के बीच में का मतभेद इतना वर्णन ही नहीं है, क्योंकि सब आसुरी स्वभाव का एक ही जैसे थे, सब क्या मतभेद होगा। लेकिन पांडव जो थे भक्त थे उनके बीच में बहुत सारे मतभेद हुए, लेकिन उस वो मतभेद उनको कभी हानि नहीं पहुंचाया। क्यों हानि नहीं पहुंचाया? क्योंकि केंद्र बिंदु कृष्ण थे वहां पे, उन लोग का जो केंद्र बिंदु उन्होंने कृष्ण को बनाया था। एक बार की घटना है कि युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय, कर्ण जो था वो क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को युद्ध में एकदम परेशान कर डाला, इरिटेट हो गए युधिष्ठिर महाराज, और उन्होंने परेशान होके युद्ध छोड़ के शिविर में चले गए, एकदम परेशान हो गए उनसे और शिविर में चले गए। ये जब बात अर्जुन को पता चला कि युधिष्ठिर महाराज दिख नहीं रहे, और तुरंत अर्जुन को ये डर हुआ कि कहीं युधिष्ठिर महाराज की हत्या तो नहीं होगी, इस प्रकार का डर गए अर्जुन। और उस समय अर्जुन भी कर्ण के साथ युद्ध कर रहा था, और अर्जुन डर वश उन्होंने रण का उधर पलायन किया, वहां से जाकर सीवर में पहले देखे कि युधिष्ठिर महाराज दिख नहीं रहे, कहां पे उनकी हत्या तो नहीं होगी, और अर्जुन भाग के युधिष्ठिर महाराज को देखने जा रहा है, और युधिष्ठिर महाराज ने सीवर से देखा कि अर्जुन आ रहा है, और उन्होंने घोषणा किया कि क्या अर्जुन कर्ण को मार के आ रहा है। तो अर्जुन तब तक पास में आ गया और बोला, क्या तुम कर्ण को मार के आए? तो अर्जुन बोला, नहीं मैं, आपने दिखे नहीं मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया, इसलिए मैं भाग के आया आपको देखने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज इतना क्रोधावेश हो गए, इतना क्रोधित हो गए अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन को धिक्कारने लगे, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तुम क्षत्रिय के नाम पे कलंक हो, तुम युद्ध से प्रणाम करके मार के आना चाहिए तुमको कर्ण को, क्योंकि इतना क्रोध हो गया उनके अंदर। और अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय को सहन शक्ति बहुत होता है एक्चुअली, तो अर्जुन सहन कर रहा है और युधिष्ठिर महाराज झुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एकदम धिक्कारते जा रहा है, धिक्कार है तुमको, इतना तक गाली इतना दिया उनको कि तुम क्षत्रिय हो ही नहीं, और यहां तक कि करते करते उन्होंने क्या किया, जी धिक्कार है तुम्हारे गांडी को ऊपर, तोड़ के फेंक दो गांडी। और अर्जुन ने प्रण लिया था कि गांडी मुझे कोई कितना भी बोलेगा मैं सहन करूंगा, लेकिन कोई मेरे गांडी को अगर बोला तो उसकी हत्या कर दूंगा, ये प्रण लिया हुआ था अर्जुन ने। और तुरंत ही जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ये बोला कि धिक्कार है तुम्हारे गांडे को तोड़ के फेंक दो, तुरंत ही उसने गांडे उठाया और बाण चढ़ा के निशाना बना दिया युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, बोला मेरा प्रण है, और बाजू में कृष्ण खड़े होकर उनका हार्ट बीट बढ़ रहा था, ये क्या हो रहा है, मैंने गीता सुनाया है आपस में कलह के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए, ये तो आपस में कलह हो गया। तो तुरंत ही भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को वहां पे समझाया कि अर्जुन देखिए हत्या करने के दो प्रकार है, एक तो तुम जिस प्रकार से डिसाइड किया कि यास्त्र से अभी तीर लगाई दियो तो तीर से मार के हत्या कर दो, दूसरा है कि उस व्यक्ति का निंदा करो, है ना, उस व्यक्ति का निंदा करो, अगर तुम निंदा कर रहे तो वो भी हत्या के तुल्य है। अभी तो अर्जुन बोला अच्छा ऐसा है क्या, तो तुरंत ही गांडीव रख दिया, शुरू किया, पूरे समय पूरे जीवन काल का फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया पूरा, है ना। कभी कभी ऐसा हमको भी मौका मिलता है ना, कि अथॉरिटी बुलाते हैं और बोलते बोला बोलो बोलो पहले बोल लो, है ना, पूरा फ्रस्ट्रेशन, इतना बोला तुम ऐसा है, इस प्रकार से कर करके पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, और इतना फ्रस्ट्रेशन निकाल गया कि फिर वो यदि बोले कि कृष्ण बोले अभी ये उनकी मृत्यु हो गया, ये मृत्यु के बराबर है, लेकिन अर्जुन को गिल्टी फील होने लगा, मैंने क्या किया ये, है ना, होता है ना कभी कभी फ्रस्ट्रेशन निकलने के बाद पता चला मैं कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इतना अच्छा इस प्रकार का ठीक नहीं है, एक वैष्णवता नहीं है इस प्रकार का, इस बाद में गिल्टी फील होता है। तो इस प्रकार से अर्जुन को बहुत गिल्टी फील हुआ और तुरंत ही युधिष्ठिर महाराज को चरण में गिर गया कि आप कितने महान धर्मात्मा है, आप कितने बड़े हैं, और आपको चरणों के प्रति मैंने इतना बड़ा अपराध किया, और इस प्रकार से रोने लगे, और उन्होंने बोला कि अभी मैंने आपके प्रति इतना अपराध किया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, अभी मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। कृष्ण ने बोला प्रॉब्लम नंबर टू अभी तो हत्या कर रहा था, अभी खुद हत्या करने जा रहा है, अपने आप को सुसाइड करने जा रहा है। तो फिर कृष्ण ने वहां पे बोला कि अर्जुन जैसे हत्या करने के दो प्रकार है, वैसे आत्महत्या के भी दो प्रकार है। तो वहां पे कृष्ण बताते, एक तो तुम अपने अस्त्र शस्त्र से अपनी हत्या कर लो, दूसरा है तुम अपना ग्लोरीज करो, अपना गुणगान करो, ये हत्या के बराबर है, है ना, आत्महत्या के बराबर है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन इज इक्वल टू सुसाइड, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन इज इक्वल टू सुसाइड। तो खुद की अगर प्रशंसा करते हैं तो आत्महत्या के बराबर है, नोटिस बात को ध्यान रखिए, है ना। तो इसलिए कभी भी अपना ग्लोरीज नहीं कह, यहाँ पे बात आ रही है कि हमको उस ग्लोरीज को अगर कोई कर भी रहा है तो हमको श्रेय देना चाहिए दूसरों के, आपके वजह से ऐसा है, श्रेय देना चाहिए दूसरे को, लेकिन अपना आपको तो ग्लोरीज करना ही नहीं। कभी हम प्रगति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लोग ग्लोरीज करेंगे, लेकिन जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो उस समय बोलना चाहिए ये आपकी कृपा से है, मैं इतना बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रही हूं, आगे आपकी कृपा है, तो इस प्रकार से तो कला बहुत हुआ इस प्रकार से पांडवों के बीच में, बहुत सारे कला का वर्णन है, लेकिन कृष्ण केंद्र बिंदु होने के नाते वो क्या हुआ, कला को उन्होंने संभाल लिया, कुछ हुआ नहीं। इसलिए केंद्र बिंदु हमको कृष्ण को रखना है और क्या करना है, एक दूसरे को, कौन सा पॉइंट था ये, एक साथ में सबको कोऑपरेट करना चाहिए, है ना। ये कौन सा हो गया, चौथा हो गया। ठीक, अभी पांचवा पांचवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, चैंटिंग जब। अभी तक मैंने जितना बताया चार सिद्धांत, वह जो है तब होगा जब जप होगा, और जब जब तब होगा जब वो होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे जपा के ऊपर डिपेंड है। हम जितना अच्छा जपा करेंगे उतना अच्छा सेवा करेंगे। ये आप लोग अनुभूत करके देखिए, ऐसा जिस दिन आप अच्छा जपा किए बैठ के बहुत सुंदर तरीके से, उस दिन आपको सेवा करने का बहुत मन करेगा। जिस दिन आपका जपा नहीं हुआ ना, पूरा दिन मूड ऑफ रहेगा, है ना, कुछ और ही सोचेंगे, और दिन में फिर जपा बराबर नहीं होता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आपका जपा अच्छा हुआ तो आपका सेवा अच्छा होगा, आपका सेवा अच्छा हुआ तो आपका जप होगा। आपको जप अच्छा करना तो अच्छा सेवा करना पड़ेगा, आपको सेवा अच्छा करना तो जप करने का, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसा तो बहुत महत्वपूर्ण विषय ये जो है जपा चैंटिंग, है ना। तो ये एक दूसरे को ऊपर करना हमको, विशेष करके वैष्णव कभी कभी चैंटिंग ना, हमको यहाँ पे जो चैंटिंग की बात आ रही है, हमको भक्त समुदाय में बैठ के चैंटिंग करना ये बहुत इफेक्टिव होता है। इसलिए हमने एक काउंसलिंग का ऐसा मनगढ़ंत ऐसा प्लान नहीं किया है कि हम बैठ के चैंटिंग करेंगे। पहले हमारा शुरुआत काउंसलिंग जब से होता है, तो हम यही प्लान किए हैं, क्योंकि हम जब गोष्ठी में बैठ के जब करते हैं, समुदाय में बैठ के जब करते हैं, तो उसका विशेष प्रभाव होता है हमारे ऊपर। इसलिए हमने प्लान किया ऐसा कि हम शुरुआत जब से करेंगे, सब लोग साथ में मिलके बैठ के करेंगे। इसलिए कोई अपसेट नहीं मानना चाहिए, टाइम पे आ जाएंगे तो जपा का ये मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से चैंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सत्संग का प्रमुख अंग है। एक्चुअली सत्संग का प्रमुख अंग चैंटिंग है। इस बात को एक बार भगवान कृष्ण नारद मुनि के इस बात को बताते हैं कि हे नारद मुनि, नारद मुनि को बोलते हैं कि मैं ना कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। कौन बोल रहा है, भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। फिर कहां रहते हैं भगवान, नाहं तिष्ठामि वैकुंठ योगिना हृदय सुआ, ना ही मैं जो बड़े बड़े योगी है मेरा ध्यान कर रहे हैं उन योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, है ना। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनो हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मुनि, मैं उस जगह पे निवास करता हूं जिस जगह पे गायंती मद भक्ता, मेरे भक्त लोग जहां पे बैठ के गोष्ठी बैठ के मेरे नाम गुणों का कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, मेरी कथाओं का वर्णन करते हैं, मैं उस जगह पे हमेशा उपस्थित रहता हूं। ये भगवान का स्टेटमेंट है। इसलिए इस गोष्ठी में भी भगवान बैठे हुए हैं, उनका प्रेजेंस है यहाँ पे, क्योंकि भगवान इसी जगह पे रहते हैं, है ना। इस बात को बताया गया कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, नारद मुनि के भगवान बता रहे बात, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, मैं जहां हमारे भक्त लोग बैठ के हमारे कीर्तन हमारे गुणों का कथाओं का कीर्तन करते हैं, मैं वहां पे रहता हूँ। तो इसलिए गोष्ठी में, है ना, ये ग्रुप चैटिंग 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 नहीं चैंटिंग चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। साथ में गोष्ठी में बैठकर हमको कीर्तन इस प्रकार से हमको जपा करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में जाते हैं, अभी लास्ट भी बोल देते हैं, है ना। पांचवा हो गया भरत प्रभु। क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि सुबह आते हैं, इसलिए तो बोला भरत प्रभु चाहेंगे तो रुकूंगा, क्योंकि वो सुबह आते हैं, बाकी सब लोग तो थोड़ा आराम कर सकते हैं क्योंकि तो ये पांचवा जो इम्पोर्टेंट है ये चैंटिंग। उसके बाद छठा क्या है, छठा छठा याद रखिए, छठा वह है हर भक्त का ख्याल रखना, ड्यूटी केयर, सभी भक्तों को ख्याल रखना, है ना। वृंदावन के ब्रजवासी गोवर्धन लीला में हम देखेंगे, गोवर्धन लीला में कि इंद्र का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ, लेकिन इतना बड़ा प्रकोप हुआ जब भगवान कृष्ण गोवर्धन को धारण कर लिए तो उस गोवर्धन के अंदर सब लोग आ गए और सब लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे थे, क्योंकि पूरा ब्रज जो है उस गोवर्धन के नीचे आ गया है ना। सब लोग एक दूसरे का कोऑपरेट, सब लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, एक दूसरे की चिंता व्यक्त कर रहे थे। अरे तुम्हारे उधर वजन तो ज्यादा नहीं है ना, इस प्रकार का सोच रहे थे। इसी प्रकार ये जो इस्कॉन रूपी गोवर्धन है प्रभुपाद जी ने अपने उंगलियों पर धारण किया हुआ है और हम उसके आश्रय को ग्रहण किए हुए हैं। इस्कॉन रूपी गोवर्धन को प्रभुपाद जी ने धारण किया हुआ है और हम उनके आश्रय को ग्रहण किए हुए हैं। हम उनके आश्रय को ग्रहण किया और जैसे ही आश्रय को ग्रहण किया मतलब भक्तों के समुदाय में आए हैं, है ना। इस प्रकार की गोष्ठी में बैठते हैं, है ना, भक्तों के बीच में रहते हैं। तो जैसे ही इस गोवर्धन से मतलब उस छत्र छाया से, है ना, जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन रूपी गोवर्धन को उठाया है, इस छत्र छाया से जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, इंद्र का प्रकोप, कितना मूसलाधार वर्षा, वज्रपात, ये सब सारा सहन करने के लिए मिलेगा, है ना। इस प्रकार क्लेश में फंस जाएंगे हम, इसलिए हमको एक दूसरे भक्तों का ख्याल रखते हुए इस सत्संग को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना, इस सत्संग को साथ में लेके चलना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण विषय है ड्यूटी केयर, सब भक्त लोग एक दूसरे का सुख दुख में ख्याल रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दुख के समय कोई व्यक्ति एक दुख, ये दुख कौन सा है, ये मानसिक स्तर पे ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, भौतिक स्तर पर बात कर रहा हूँ कि कोई भक्त एक बार कोई भक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, जैसे ही हमको पता चला हमको क्या करना चाहिए, वो जाके उस भक्त को देखना चाहिए, पूछना चाहिए उसके पास क्या हुआ कैसे हुआ। तो हर एक भक्त एक दूसरे का ख्याल रखे, दो प्रकार के केयर बहुत जरूरी है, क्या दो प्रकार का प्रेम, एक मदर्स लव और एक फादर्स लव। मतलब मदर्स लव मतलब सुख दुख में उसको साथ देना, और फादर्स लव मतलब वो भक्त जो सेवा में लगा हुआ है उस सेवा का को नीचा न दिखाना, मतलब आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो। हम क्या करते हैं सेवाओं के अंदर भी ना तो ये निकालते हैं, ये तो झाड़ू मार रहा है ना, ये तो पुलिस का सेवा, अरे मैं तो ऑफिस का सेवा करता हूँ, है ना, मैं तो अच्छा बड़ा सेवा करता हूँ, मैं तो मैनेजमेंट के अंदर सेवा करता हूँ, अरे वो तो क्या पुजारी है, कोई बात नहीं, वो तो हमें शेड्यूल बनाते तो पूजा करता है जाके, हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। भगवान की नजरों में कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। एक भक्त झाड़ू मार रहा है, एक पुजारी कर रहा है, एक मैनेजमेंट कर रहा है, कोई भी, ये सारी चीजें भगवान के नजरों में सेवा मतलब एक ही दृष्टिकोण है। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको सेवा में इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। तो कोई भक्त जिस सेवा में भी थोड़ा बहुत कर रहा है उसको हमको उस सेवा का मूल्य देना है, है ना, कि बहुत मूल्यवान सेवा आप कर रहे हो। ऐसा नहीं बोलना है कि यार भाई तुमसे अच्छा मैं सेवा कर रहा हूँ, उसको इस प्रकार से। तो ये केयरिंग जो है ना, ये इसका बड़ा डिफिनेशन है। तो केयरिंग बहुत जरूरी है, एक दूसरे को सुख दुख में साथ देना और एक साथ में मिलकर रखना, और तभी जाके हम ये जो समूह को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, हमारी प्रगति आगे हो सकता है, और हमारा जो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, हम वहां तक पहुंचने का सोच सकते हैं। अन्यथा ये बेसिक चीजें मैंने बताया, अगर ये चीज नहीं कर रहे अपने जीवन में ना, हमारी प्रगति नहीं होगा। आदो श्रद्धा, नौ स्टेप है, आदो श्रद्धा सदा साधो संगो था भजन क्रिया इत्यादि इत्यादि निष्ठा भाव अस्तर प्रेम सब है। श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, बहुत सारे एक एक स्टेप। हम अभी भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के बीच में, हम अनर्थ निवृत्ति भी पहुंचे नहीं, भजन क्रिया में ही फंसे हुए हैं। तो हमको आगे कितना जाना है, तो अगर हम इस प्रकार के इन छह सिद्धांतों को अगर मन के अंदर रख के चलेंगे, इस विचार करते हुए चलेंगे, तब जाके ये कोई प्रवचन नहीं था, ये कोई कथा नहीं था, एक सबको क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें हमको करना है, तभी जाके हमारा प्रगति, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हमारे वही को वही रह जाएगा ना, वो लंगर निकाला नहीं, नाव रात भर चलाया रात भर, पता चला यही कहीं इधर ही किनारे पे, पता चला वो लंगर ही नहीं निकाला, है ना, तो छोड़ा ही नहीं रस्सी से। तो हमारी प्रगति नहीं, हमको प्रगति करना है तो विशेष करके ये जो छह सिद्धांत है इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ डिवोटी कम्युनिटी, भक्तों के समुदाय की जो सही सिद्धांत है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको अपने ध्यान में रखते हुए हमको इस कम्युनिटी, इनको, इस समुदाय को, इस वैष्णव सत्संग को हमको आगे बढ़ाना है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। क्षमा चाहता हूँ, आधा घंटा लेट हुआ है ना, तो आप लोग चाहे तो मेरे लिए पनिशमेंट तय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था 9:30 बजे खत्म करने का, लेकिन टॉपिक ऐसा था इसलिए बढ़ गया, नहीं तो अन्यथा बढ़ता नहीं है, मैं तो टाइम पे खत्म कर देते। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।